हमारे साउंड के भाई का बहुत ही प्यारे प्यारे गीत जो हमारे विषय से जुड़े हुए हमें स्मृति दिला देते हैं। हम किसी का कितना इंतजार कर सकते हैं यदि इंतजार हमें करना पड़े तो। आप अपने कमरे में 2, 3, 4, 5 लोग हैं, कोई आपका सखी सखा जो कमरे में ही है, क्लास का समय हो गया है, वो तैयार नहीं हुआ है, आप उसका कितनी देर इंतजार करेंगे? पांच मिनट, उससे ज्यादा नहीं कहते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं करें। हाँ जी, इंतजार करना ही नहीं है, नहीं थोड़ा तो करो। इंतजार भी तो प्यार की निशानी है ना, क्योंकि हम किसी अपने के लिए इंतजार करते हैं, ऐसा इंतजार नहीं कि हम उसके कारण हैं, अपना पुरुषार्थ, अपनी स्थिति गवाएं। तो कहने का भाव, हम किसी का 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट इंतजार कर सकते हैं, राइट? उसके बाद हमें इरिटेशन होने लगती है कि भाई ये तैयार नहीं हो रहा है, तैयार नहीं हो रहा है। फाइनली हम कहते हैं, भाई तू आते रहना, मैं चला। बाबा हमारा कब से इंतजार कर रहे हैं? बाबा हमारा कब से इंतजार कर रहे हैं? वतन में बैठकर 1969 से अब हम 2025 में हैं। बाबा हमारा इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरे बच्चे आएंगे, अव्यक्त बनकर आएंगे और हम सब वापस घर चलेंगे। इस प्रोजेक्ट, फॉलो फादर प्रोजेक्ट की शुरुआत ही इसी बेस पर हुई। व्यक्त से अव्यक्त की ओर भले उसका हमने नाम लिया, लेकिन फॉलो फादर अम्ब्रेला थीम है हमारा। इसकी शुरुआत ही बाबा के उस संदेश के आधार पर हुई जो बाबा ने संदेश में कहा कि वतन में बाबा इंतजार कर रहे हैं कि मेरा कौन सा बच्चा सबसे पहले मेरे पास आता है और मुझे ये खुशखबरी सुनाता है कि बाबा मैं आपके समान अव्यक्त मूर्त बन गया, आपके समान बन गया। तो बाबा इंतजार कर रहे हैं। तो कौन खुशखबरी सुनाएगा आप में से? कौन सुनाएगा? हाथ तो उठाएं जरा। अच्छा अच्छा, हम सुनाएंगे ना? आरती बहन नहीं सुनाएंगे? हम सुनाएंगे। ये दृढ़ता इस प्रोजेक्ट की नींव है कि बाबा को अब हमें और इंतजार नहीं कराना है। हम उसके समान बनकर, भले वो हमें सेवा अर्थ इस धरा पर रखें, जब तक रखें, लेकिन हम अव्यक्त रूपधारी बनकर रहेंगे। ये दृढ़ता, ये लगन, ये धुन, ये इस ग्रुप की, इस प्रोजेक्ट के हर एक पार्टिसिपेंट की, हर एक भाई बहन की होनी चाहिए। तो आप सभी का इस सुंदर अव्यक्त परिवार में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। अव्यक्त परिवार है ये हमारा, हमेशा मैं इसे परिवार कहता हूँ। अव्यक्त परिवार, व्यक्त से अव्यक्त की ओर चलने वाला परिवार, अव्यक्त परिवार, बाबा के पद चिन्हों पर चलने वाला, बाप समान बनने वाला परिवार, बाबा की आशाओं को पूर्ण करने वाला, बाबा की आशाओं का दीपक, उन दीपकों का परिवार। और परिवार में क्या होता है? परिवार में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार, बहुत सम्मान, बहुत अपनापन, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की भावना, ये परिवार की नींव होती है जो एक सूत्र में बांधे रखता है हम सभी को। तो हम सभी ग्रुप नहीं, इसे परिवार कहते हैं। तो ये हमारा अव्यक्त परिवार है। तो इस परिवार में कुछ तो पहले से ही जुड़े हुए सदस्य हैं और कुछ नए सदस्य शामिल हुए हैं। तो उन सभी नए सदस्यों का बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन, स्वागत है। जब परिवार में एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हैं, आपका लौकिक भाई या आपकी लौकिक बहन, आप पूरी कोशिश करते हैं कि उसने जो लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य को वो हासिल करे, और जब वो हासिल करता है, उस ओर बढ़ता है, सफलता अर्जित करता है, तो खुशी होती है। तो ऐसे एक दूसरे को आगे बढ़ाने में हमें हृदय से खुशी हो, इसमें हम क्या नए से नया करें ताकि पूरे परिवार को सहयोग मिले आगे बढ़ने में, उन्नति करने में, ज्ञान की गहराई में उतरने में, उसमें हम अपना संपूर्ण योगदान दें। तो हमारे एक एक का सहयोग, एक एक का योगदान, एक एक के ऐसी सुंदर वाइब्रेशन, सुबह भी चर्चा हो रही थी संगठन का बल, परिवार का बल। बाबा हमेशा व्यक्त मुरलियों में कहते रहे हैं, सामूहिक रूप से जब तुम सबका एक संकल्प होगा तब विनाश ज्वाला भड़केगी, तब परिवर्तन होगा। तो एक सामूहिक संकल्प और इस परिवार की ये विशेषता, हमारे समूह की ये विशेषता है कि हम सामूहिक रूप से फोकस्ड होते हैं किसी एक पुरुषार्थ पर, एक मुरली पर पूरी तरह फोकस्ड, एक स्वमान पर पूरी तरह फोकस्ड, एक धारणा पर पूरी तरह फोकस्ड, एक हमारा चिंतन, एक मत हो जाता है ना फिर, एक ही डायरेक्शन होता है हमारे पुरुषार्थ का। तो इतने सारे ब्राह्मण जो आज यहां बैठे हैं और एक एक रिप्रेजेंट कर रहा है अपने एक एक सेंटर को, एक एक स्थान को, आप वहां जाएंगे, इन सुंदर बातों को अपने अन्य भाई बहनों को सुनाएंगे, वो सब भी इसके साथ जुड़ेंगे। तो हमें व्यक्तिगत रूप से इस परिवार के साथ, इस ग्रुप के साथ, समूह के साथ तो जुड़े रहना है, लेकिन यहां से जाने के बाद अपने 5-10 का समूह अपने लोकल स्थान पर भी यदि हम बना सकें बहुत अच्छा होगा, अपने टीचर्स बहनों के साथ मिलकर। तो यहाँ के की कनेक्टिविटी, वहां की कनेक्टिविटी, दोनों ही साथ साथ शक्तिशाली रूप में काम करेगा। आज जो सुबह की अव्यक्त मुरली थी, हमारे प्रोजेक्ट को बाबा ने और भी ज्यादा अंडरलाइन कर दिया कि बाबा तुमसे क्या आश रखते हैं, क्या चाहते हैं। तो अव्यक्त मुरली क्या थी, 2-3 पॉइंट विशेष करके अंडरलाइन किया होगा आप सबने, क्या थी? ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूपधारी बनो, अव्यक्त। तो फॉलो फादर भी उसमें आ गया, अव्यक्त रूपधारी भी आ गया। तो बाबा की ये विशेष प्रेरणा कि अब तुम्हारे चलन और चेहरे से ब्रह्मा बाबा दिखाई दें। वैसे भी संसोज फादर कहा जाता है, तो हम सब का ये कर्तव्य ही है, हमारे माता पिता कैसे हैं, ना केवल ब्रह्मा बाबा लेकिन शिव बाबा, माता पिता एक ही हो गए हैं हमारे लिए। जब हम फॉलो फादर कहते हैं तो उसमें निराकार और साकार दोनों बाबा शामिल हैं। तो बाबा ने कहा अव्यक्त रूपधारी बन जाओ और अपनी चलन चेहरे से वो प्रत्यक्ष करो, ये बाबा देखना चाहते हैं। तो हमारे पूरे वर्ष का पुरुषार्थ इसी बात पर केंद्रित कि हम अपनी चलन चेहरे से उस अलौकिकता को, उस रूहानियत को दिखाएं। वतन हमारा घर बन जाए, वतन मेरा घर, जहां हम ज्यादा से ज्यादा वक्त बाबा के साथ रहें, तभी तो जैसा संग वैसा रंग लगेगा। तो वतन मेरा घर है, अव्यक्त बनना है तो ज्यादा से ज्यादा व्यक्त से हमें अव्यक्त स्थिति में स्थित होना होगा। तो एक बाबा ने अव्यक्त रूपधारी बनने की विशेष प्रेरणा हम सबको दी। दूसरी बात बाबा ने जो खास बात उसमें कही मुझे बहुत प्यारी लगी कि एक होता है कि आप समय का इंतजार करते हैं, लेकिन बाबा ने कहा समय आपकी क्रिएशन है और आप क्रिएटर हो, तो क्रिएटर की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। तो बाबा ने कहा कि जैसे तुम्हारा ये जो बाप समान का जो स्वरूप है अव्यक्त रूप, ये अव्यक्त रूप जो तुम्हें दिखाना है ये तब हो सकेगा जब इसे एक लक्ष्य के रूप में बना लेंगे कि यही मेरा लक्ष्य है, और उस लक्ष्य की एक डेट फिक्स कर लेंगे कि हाँ 6 मास या 1 साल का समय जिसमें मैं अपने आप को संपूर्ण अव्यक्त रूपधारी बना लूंगा। जो बाबा के शब्द, वही शब्द मैं दोहरा रहा हूं क्योंकि आज विशेष बाबा ने इस मुरली में इस बात को अंडरलाइन कराया है। बाबा ने कहा ये होमवर्क बाप दादा विशेष रूप से दे रहे हैं कि अपने आप को ऐसा बनाओ, और कितना समय चाहिए बाबा ने कहा, 6 मास की बात बाबा ने कही, हम 1 वर्ष विशेष करके इस ध्येय को प्राप्त करने में लगा दें। 1 साल बाबा ने, वैसे भी 1 साल टाइम फिक्स डबल फॉरेनर्स के लिए कहा, 6 मास भारत वालों के लिए कहा, और वैसे हमारे प्रोजेक्ट की जो अवधि होती है वो 11 से 12 मास अर्थात 1 साल की होती है। तो इस 1 साल में क्या हम ऐसी धुन लगा सकते हैं कि जो बाबा ने कहा कि बाबा आपके चलन चेहरे से बिल्कुल आपको अव्यक्त रूपधारी देखना चाहते हैं, बाप समान देखना चाहते हैं, वो हो जाए, ऐसा संभव है 1 साल में? हो सकता है ऐसा? बाबा ने कहा सिर्फ लक्ष्य पक्का करो। यदि हमने ऐसा लक्ष्य बना लिया, मान लो डॉक्टर ने मुझे कह दिया कि आपके पास 1 साल का समय है, 1 साल के बाद आप अव्यक्त होने वाले हैं, तो क्या करेंगे भाभी कहते हैं? क्या करेंगे? क्या वैसे ही रहेंगे जैसे आज हैं? सुरेश में 1 साल यदि आपके पास है तो क्या करेंगे? उस पूरे 1 साल को धुन लगा देंगे वो करने में जो हमें करना चाहिए। 1 साल चलो लंबा हो जाता है, यदि मैं 1 दिन की बात कहूं, 1 दिन का वक्त हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, हम क्या करेंगे उस पूरे 1 दिन को जितना हो सकता है हम याद में सेवा में सफल करेंगे या नहीं करेंगे, या वही करेंगे जो हम करते हैं नॉर्मली? नॉर्मल आराम से उठे, आराम से क्लास में आए, आराम से हाँ ऐसा घूमना फिरना गपशप आदि आदि जो यहाँ नहीं कर रहे हैं लेकिन आम तौर पे हमारा कभी कभी हो जाता है, नॉर्मल रूटीन, नॉर्मल लाइफ, मोबाइल उठा के हमने कुछ भी देखना शुरू कर दिया और उसमें घुस गए तो फिर लंबे अंतराल के बाद बाहर आए, हाँ पता चला अरे 1 घंटे कहाँ निकल गए पता ही नहीं चला। ऐसा करेंगे यदि हमारे पास केवल 1 दिन हो तो? अब ये पक्का कर लें, 1 साल का वक्त बाबा ने मुझे दिया है, इस 1 साल में मुझे अपने आप को संपूर्ण अव्यक्त रूपधारी, ये नहीं कह रहा कि हम अव्यक्त होके वतन में चले जाएं, लेकिन अव्यक्त रूपधारी बनकर बाप समान बनकर हम यहीं इस धरा पर बाबा की प्रत्यक्षता के कार्य में, बाबा के कार्य को संपन्न संपूर्ण करने में लग जाएं पूरी तीव्रता के साथ, एक ब्रह्मा ऊपर और एक ब्रह्मा नीचे, वो ब्रह्मा मैं हूं, वो मास्टर ब्रह्मा मैं हूं, ये हम पक्का करें, ये हमारा लक्ष्य है, एक ब्रह्मा ऊपर और एक ब्रह्मा यहां इस धरा पर, जहां जहां हम हैं वहां के तो हम निमित्त ब्रह्मा हैं ही मास्टर ब्रह्मा, इन पूरी सृष्टि के लिए मैं मास्टर ब्रह्मा, लोग देखें एग्जाम्पल स्वरूप कि ब्रह्मा कैसे थे, परमात्मा कैसे हैं, ये मेरे रूप से मेरे अव्यक्त रूप से देखें, ये हमारा लक्ष्य बन जाए। और एक बात बाबा ने और कही, चेहरे और चलन से कम 108 दाने तो ऐसे हों जिनके चलन चेहरे से दिखाई दे, कम से कम 108 दाने, यहां मुझे लगता है कम से कम 600 दाने बैठे हुए हैं राइट। अब इन 600 दानों में हमारे इस पूरे परिवार में एक सुंदर पॉजिटिव रेज, हम ऐसी एक चीज क्या बाबा को भेजें दें, हाँ? संदेश के रूप में, दीदी कह रही थी अब बाबा बिजी हो गए हैं, लेकिन हम अपने दिल की भावना ऐसी भेजें कि बाबा ये जो व्यक्त से अव्यक्त का ग्रुप है, 108 का दाना आप इस ग्रुप से ले सकते हैं, है ना, है ना, ऐसी दृढ़ता है, आप एक दूसरे के लिए ताली तो बजा लीजिए, इतना सुंदर लक्ष्य, इतना ऊंचा लक्ष्य कि बाबा 108 ये सब व्यक्त परिवार में, यूं हमारा पूरा ब्राह्मण परिवार हमारा अपना है, लेकिन स्पेसिफिकली हम रिस्पॉन्सिबल हैं अपने परिवार को भी प्रेरित करने के लिए। हम ही देखकर लोग प्रेरित हों पुरुषार्थ करने के लिए, है ना? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? बाबा को देखकर बच्चे प्रेरित होते थे, मम्मा को देखकर प्रेरित हुआ करते थे, दादी को देखकर प्रेरित होते थे। अब हमारी एक दादी दर्शनीय मूर्त हमारे बीच हैं, हमारी सभी बड़े अव्यक्त हो गए। हमारे देखते देखते हमारी सभी टीचर्स बहनें बैठी हैं, बहुत पुराने भाई बहन बैठे हुए हैं, हमारी आंखों के सामने हमारे देखते देखते हमारे बड़े व्यक्त से अव्यक्त हो गए। और जब तक व्यक्त में थे तब तक वो सभी के लिए प्रेरणा की मूर्ति थे, उन्हें देख करके सभी प्रेरित हुआ करते थे। अब उनका स्थान कौन लेगा? उनका स्थान कौन लेगा? जब घर के बड़े चले जाते हैं ना, तो छोटे बड़े हो जाते हैं, छोटे बड़े हो जाते हैं। अब हमें बड़े हो जाना है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कर्तव्य, जो दायित्व हमारी दादियों ने निभाया, अब वो दायित्व हमारा है। अब हम छोटी छोटी बातों में उलझे ना रहें, अब हम बड़े हैं, हमें अपने छोटों को प्रेरित करना है, अपने छोटों को अपने चलन चेहरे जीवन से दिखाना है। मैं ही अमृत वेला हल्का रहूंगा, पुरुषार्थ में हल्का रहूंगा, धारणाओं में हल्का रहूंगा, तो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाले बाबा के बच्चे हैं, वो किसको देखकर सीखेंगे? हम सबका अनुभव है कि ज्ञान से हमने कम लेकिन अपने बड़ों को देखकर ज्यादा सीखा है। ठीक, बच्चे माता पिता को देखकर ज्यादा सीखते हैं, फॉलो करते हैं। हमने भी अपने बड़ों को देखकर सीखा है, हमारे बड़ों ने सिखाया। आज राजू भाई जी बता रहे थे ना, दादियां कितनी भी बिजी हो गईं, शाम का योग 7 से 7:30 का, अब इतने सारे कारोबार के होते हुए भी उनको देखकर के छोटों ने सीखा ना कि भले कारोबार है लेकिन हमारा अमृत वेला मिस नहीं होगा, हमारी मुरली मिस नहीं होगी, हमारा शाम का योग मिस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे बड़े, हमारी दादियां जो पूरे यज्ञ को संभाल रही हैं, वो जब इतना वक्त निकालती हैं, हम क्यों नहीं? मनमोहनी दीदी पूरे यज्ञ की कंट्रोलर थी लेकिन अमृत वेले से लेकर मुरली क्लास तक वो मौन रहते थे। हमारी डॉक्टर निर्मला दीदी अनुभव सुनाती थी कि एक बार मैं गई, ऑस्ट्रेलिया से आई थी, कुछ कारोबार की बात करनी थी, मुरली से पहले मैं पहुंच गई दीदी के पास और दीदी से कहा कि दीदी आपसे मिलना काम है। तो दीदी ने बहुत विस्परिंग वॉइस में कहा कि क्या ये काम मुरली क्लास के बाद हो सकती है? तो निर्मला दीदी ने कहा कि हाँ दीदी हो सकता है। तो कहा क्लास के बाद आना। क्लास तक दीदी मौन में रहते हैं। सिखाया ना, ये कहा क्या कि नहीं इतने ही बड़े यज्ञ का कारोबार है, मुझे तो योग करने का भी समय नहीं है, मुझे सुबह उठने का समय नहीं है, शाम को योग में बैठने का समय नहीं है, मुरली क्लास में आने का समय नहीं है। कई बार हम ये कहने लगते हैं ना, इतनी सारी जिम्मेवारी है लौकिक की अलौकिक की कि हमें तो योग में बैठने का समय नहीं है, शाम को हम समय नहीं निकाल सकते, इतने थक जाते हैं कि सुबह आंखें बंद करके हमें बैठना पड़ता है ताकि सांप छोड़ने की जरूरत। ऐसे एग्जाम्पल हम बनेंगे, ये हमारे इस ग्रुप का लक्ष्य। ठीक है, 108 जो बाबा ने कहा, कम से कम 108 दाने तो जिनके चलन चेहरे से अव्यक्त बाबा का रूप दिखाई दे, वो 108 हम अपने ग्रुप से, और वो मैं आज अपनी संख्या भी ना स्लिप में लिख के दीजिएगा, स्लिप में ये विजय माला में मेरा नंबर ये है जो आज बाबा ने कहा, ये मेरा नंबर है, मैं जो बाबा ने कहा है उसे मैं करूंगा। तो स्लिप में अपना जरूर लिख करके देंगे, ये मेरा नंबर है, कर सकते हैं। दादी जानकी जी कहा करते थे, मैं बाकी बातों में बाद में आऊंगा, दादी जानकी कहा करती थी कि बाबा तो फाइनली 108 की माला बनाएंगे, लेकिन उससे पहले माला में आप अपना स्थान फिक्स करो। बाबा तो अंत में बनाएंगे ही जो बन जाएंगे, लेकिन मैं माला के दाने में अपना स्थान फिक्स करूं कि ये स्थान मेरा है। और बाबा ने कहा कि ये मत सोचो कि इतनी सारी दादियां, इतने सारे दादा, इतने सारे मधुबन निवासी, इतनी सारी टीचर्स, उनके होते हुए हम कहां आएंगे। कौन कौन ऐसा सोचता है? अच्छा, नहीं हाथ उठा सकते ऑनेस्टली, परिवार में बैठे हैं हम, राइट? हम परिवार में बैठे हैं, इसीलिए परिवार में खुल के बातें हो हैं, थोड़े नेचुरल है। यदि हम दादियों की तपस्या त्याग को देखते हैं तो हमें लगता है कि अरे उतना हम कहां कर पाएंगे, वो उनका रोल था। आज बाबा ने क्या कहा? लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट। बाबा की इस मुरली को फिर से पढ़िएगा और अंडरलाइन कर लीजिएगा, जो बाबा ने विशेष इसमें बातें कही है ना, वो खास ये कहा, जो ओटे सो अर्जुन। और बाबा ने कहा कि यदि आप पक्का कर लेंगे कि कितना भी कोई भी कर सकता है, एक तो बाबा ने ये कहा, और लास्ट वाला भी फास्ट जाके फर्स्ट आ सकता है, सिर्फ लक्ष्य पक्का हो, जो ओटे सो अर्जुन। ये भगवान उवाच है, ये भगवान उवाच है कि कोई भी कर सकता है, कोई भी 108 में आ सकता है, बस लक्ष्य पक्का चाहिए, जो ओटे सो अर्जुन। मैं अपना नंबर फिक्स करूं और बाप समान अव्यक्त रूपधारी बनने में मेरा नंबर होगा, इसकी डेट फिक्स करूं। क्या डेट फिक्स करें हम? एक डेट चाहिए ना? आप विचार करके पेपर में आप दीजिएगा, ठीक है? पेपर्स हैं, इस पे आप अपने नाम, नंबर आदि भी, जिनके ऑलरेडी हैं वो नहीं, जो ग्रुप में ऑलरेडी हैं वो नहीं, लेकिन जिनके नहीं हैं वो ज़रूर इस पेपर में अपना लिख करके देंगे। और साथ ही अलग से ना कुछ क्वेश्चंस आप, क्योंकि अभी हम लोग केवल चर्चा के लिए बैठे हैं, जो बातें हैं आप लोगों के सामने रखनी हैं, लेकिन आप कुछ बातें अलग से एक पेपर में लिख करके दीजिएगा। और वो क्या हो, इस ग्रुप में आप क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि पुरुषार्थ कैसा हो, क्या क्या आपके सुझाव हैं कि ये चीजें इस ग्रुप में हो सकती हैं तो और बेहतर हो। इस ग्रुप के लिए हम एक पंच लाइन सोच रहे हैं, जैसे वन लाइनर होता है ना, वो वन लाइनर क्या हो, ऐसी 4-5 बातें आप लिख करके दीजिएगा, उसे मैं अंत में और कहूंगा, लेकिन पेपर भी आप लोगों के पास सर्कुलेट होगा। विनय भाई, आप ये पेपर ले जाएंगे, इसमें अपना नाम, अपना स्थान, अपना टेलीफोन नंबर, खास करके व्हाट्सएप नंबर, और एक कॉलम में आपकी जो विशेषताएं हैं, जो आप ऑफर कर सकते हैं सेवा के लिए, आप वो जरूर इसमें लिखेंगे। तो ऐसा एक कॉलम बना करके, कॉलम बना सकते हैं और फिर शेयर कर दीजिए सभी को, है ना, बहनों की तरफ और भाइयों की तरफ। अच्छा, दूसरा, यदि आप ऑलरेडी ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो आप अपना नाम, नंबर आदि उसमें ना लिखें, केवल सर्विस जो आप कर सकते, ऑफर कर सकते हैं, जैसे आप कंप्यूटर में माहिर हैं, आप कुछ स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, यदि आप ऑनलाइन जो हमारी सेवाएं होती हैं उसमें कुछ शेयरिंग में अपनी सेवाएं दे सकते हैं, या जो भी आपकी योग्यता है, विशेषता है, उस सर्विस वाले कॉलम में आप जरूर 1 या 2 शब्द में लिख कर देंगे। और जो ऑलरेडी फॉलो फादर ग्रुप में, या व्यक्त से अव्यक्त ग्रुप में, या तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में, तीनों एक ही हैं, अलग अलग समय पे इनके अलग अलग नाम थे, तो यदि आप उसमें ऑलरेडी हैं तो आप अपना नाम, नंबर, प्लेस आदि मत लिखिएगा, केवल सर्विस जो आप ऑफर कर सकते हैं वो लिखिएगा। इसे जो आ रहा है पेपर भाइयों की तरफ और बहनों की तरफ, उसमें आप इसे फिल कीजिएगा। तो आज की मुरली हमारा सुंदर पुरुषार्थ का आधार, बाबा का संदेश, जैसे मैंने आपको कहा था, संदेश हमारी इस सुंदर प्रोजेक्ट का आधार कि बाबा वतन में हमारा इंतजार कर रहे हैं, अब हमें अपने आप को उसके लिए तैयार करना है। अलका दीदी ने भी आज जो बात कही वो भी हम सबको प्रेरित करने वाली है, जैसे जागृत करने वाली है कि बाबा अब समेट रहे हैं, हम भी अपने आप को समेट लें, अपने आप को तैयार कर लें। टू लेट का बोर्ड ना जाने कब लग जाए, है? और जब एक बार बाबा ऊपर चले गए तो हम जो बाबा से लेना चाहते हैं वो फिर लेना बंद हो जाएगा। अभी भी बाबा हमारे लिए उपस्थित हैं, बाबा अभी भी हमें, हम जितना वक्त बाबा से चाहते हैं ले सकते हैं, और बाबा हमें तैयार करने के लिए, बाबा हमें गढ़ने के लिए बैठे हुए हैं वतन में, हमें रेडी करने के लिए। तो हमें पूरा पूरा लाभ लेना है, ज्यादा से ज्यादा अपने आप को बाबा से भरते हुए आगे की ओर बढ़ाना है। तो विशेष करके बाबा की ये सुंदर प्रेरणाएं लेते हुए हम सब इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ेंगे। और जैसे कल भी एक बात आप सबसे मैंने कही थी कि पिछले वर्ष भी जब हमने ये प्रोजेक्ट लिया था तो हमारा आधार था बाबा की अव्यक्त मुरलियां, क्योंकि बाबा की अव्यक्त मुरलियों से ज्यादा गहनता, ज्यादा सूक्ष्मता और आपको कहीं नहीं मिल सकते। बाबा ने जो महावाक्य उच्चारे हैं, जब बाबा अव्यक्त हुए तो अव्यक्त होने के बाद बाबा की जो अनुभूति थी, बाबा का जो पुरुषार्थ था, उसे बाबा ने 69 से लेकर के मुरलियों में स्पष्ट किया। इसीलिए हमें 69 ऑनवर्ड्स मुरलियों को व्यक्त से अव्यक्त प्रोजेक्ट के लिए अपना आधार बनाया था, और जब इसका अध्ययन किया तो उसकी सूक्ष्मता को सचमुच बहुत ही गहराई से अनुभव किया। 80 तक हम पहुंच चुके हैं, आगे 80 से ऑनवर्ड एवरी डे कम से कम एक, और यदि छोटी मुरलियां हैं तो हम दो मुरलियां लेंगे, और उन मुरलियों को आधार बनाकर, कल भी मैंने चार बातें कही थी हमारे पुरुषार्थ का, जो बातें हैं मैं आपके सामने रख रहा हूं, फिर आप अपने सुझाव भी सम्मुख रखिएगा। इन मुरलियों को, जो अव्यक्त मुरलियां हैं, वो आपको सर्कुलेट की जाती हैं, जाएंगे, उन मुरलियों का हमें अध्ययन करना है, उसकी ऑडियो मुरली भी आपको भेजी जाएगी, जो ऑडियो मुरली आप अच्छी तरह से सुन भी सकते हैं। ऑडियो मुरली इसलिए ताकि जो मुरली आपको भेजी गई है, मुरली कई बार हम एक बार पढ़ पाते हैं, वक्त नहीं होता तो फिर हम नहीं पढ़ पाते, लेकिन वो ऑडियो मुरली के फॉर्म में होती है, तो आप भोजन करते हुए सुन सकते हैं, ट्रैवलिंग करते हुए सुन सकते हैं, कभी और समय मिला तो सुन सकते हैं। 3-4 बार आप वो मुरली सुन लेते हैं, बहुत अच्छे से वो गहराई में आपकी चली जाती है। तो उस अव्यक्त मुरली को अच्छी तरह से अध्ययन और श्रवण करने के पश्चात अल्टरनेट डेज पे उस पे क्विज रखी जाती है, और वो क्विज ऑनलाइन होती है। मैं चाहूंगा कि आप क्विज में जरूर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि जब हम पार्टिसिपेट करते हैं क्विज में, तब हमें पता चलता है कि हम कितना हमने गहराई से मुरली को पढ़ा है और कितना याद रखा है। जब एग्जाम होता है तभी तो बच्चा अपनी पढ़ाई को याद रखता है, यदि एग्जाम ना हो तो पढ़ाई को याद रखेगा नहीं, इतना सिंसियरली वो स्टडी भी नहीं करेगा। तो हम सिंसियरली स्टडी तभी करते हैं मुरलियों की, सिंसियरली तभी सुनते हैं जब हमें एग्जाम देना होता है, और एग्जाम में यदि मार्क्स मेरे 100 में से 50 आए, 60 आए, तो लक्ष्य फिर क्या होता है कि नहीं, कल जो एग्जाम होगा या परसों जो एग्जाम होगा मैं और अच्छी तरह से प्रिपेयर करूंगा और उसे दूंगा। एक बात, कई लोग ये कहते हैं कि चलो स्वरूप बनना वो हमारा लक्ष्य है, उस पर हम आएंगे, लेकिन यदि केवल बाबा की मुरलियों को आप पढ़ें, केवल बाबा की मुरलियों को सुने, उससे भी अंतर मन, हमारी अंतर स्थिति, हमारे संस्कार बदलते जाते हैं। कितनों को ऐसा अनुभव है? हम सब ये अनुभव करते हैं, राइट? केवल सुनने और केवल अध्ययन मात्र से बाबा के कुछ ऐसे महावाक्य हृदय में उतर जाते हैं, छप जाते हैं, जो हमारे लंबे समय से चल रहे द्वंद को समाप्त कर देते हैं, लंबे समय से चल रहे हमारे मन के व्यर्थ को खत्म कर देते हैं, लंबे समय से जिस संस्कार से हम जूझ रहे हैं उसे खत्म कर देते हैं। हमारी बहुत सारे अनुभव आए हुए हैं भाई बहनों के, अभी भी हम सुनेंगे कुछ भाई बहनों के अनुभव। एक भाई ने अपना अनुभव शेयर किया था कि मेरी दैहिक दृष्टि बहुत थी, मतलब देह की ओर बहुत पुरुषार्थ करके भी, लेकिन देह की ओर ध्यान चला ही जाता था। जॉब करते हैं तो एक स्ट्रगल, लंबे समय से ज्ञान में है लेकिन लंबे समय से यही स्ट्रगल चलता आया। अभी जो अव्यक्त मुरलियों का सुंदर अध्ययन, श्रवण, चिंतन, उसका चार्ट रखा जा रहा है, तो उन्होंने एक महावाक्य आया था इसी 69 और 80 के बीच में, मुझे लगता है कि वो 74-75 की होगी, बाबा का महावाक्य कि बच्चे शव को नहीं शिव को देखो। यदि शव को देखोगे तो उसका विष तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाएगा और तुम मूर्छित हो जाओगे, जान भी जा सकते हैं। तो एक लाइन है, देखिए उसने कहा इस एक लाइन ने मेरे लंबे समय के द्वंद को खत्म कर दिया, लंबे समय के संस्कार को खत्म कर दिया कि बच्चे शव को नहीं शिव को देखो। तो जब कभी शव की ओर अर्थात देह की ओर दृष्टि जाती है, तुरंत बाबा के ये महावाक्य यहां घंटी बजाने लगते हैं, शव को नहीं देखना है शिव को देखना है, शव को नहीं देखना है शिव को देखना है, और अंदर से शिव 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 चलने लगता है। तो शिव मंत्र का जाप होने लगता है और बस वहां से ध्यान हटके बस शिव में लग जाता है, क्योंकि शव से मिलेगा क्या, कुछ भी नहीं, विष ही अंदर जाएगा। किसी एक ने और कहा, एक महावाक्य और आया कि यदि प्यार में परसेंटेज होगा तो परफेक्ट नहीं बन पाएंगे। बाबा तो हमारे कवि हैं ना, तो इतनी अच्छी राइमिंग के साथ महावाक्य देते हैं, प्यार में परसेंटेज होगा तो कभी परफेक्ट नहीं बन पाएंगे। तो एक ने अनुभव शेयर किया था कि अब तक प्यार यहां वहां बटा हुआ था, जैसे बाबा का ये महावाक्य आया तो बाबा के महावाक्यों को पढ़ते हुए सुनते हुए हम अपनी एक अलग डायरी में बाबा की इन सुंदर महावाक्यों को नोट भी करते चल रहे हैं। आप नोट करते चलिए इन महावाक्यों को, हर मुरली से कम एक दो सुंदर महावाक्य। और इस बार और सुंदर सूक्ष्मता हम करने जा रहे हैं, सुनील भाई भी शेयर कर रहे थे हमारे साथ और हम लोग इसे करते भी रहे हैं। लक्ष्य है कि मुरलियां हमें याद भी रहें, तो मुरली को हम कुछ सुंदर कुछ ऐसे शब्द ले लें जिसको कहते हैं कीवर्ड्स, तो हमें पूरी की पूरी मुरली भी याद रहेगी। तो यदि हमने पूरी एक मुरली पढ़ी है तो मुरली से यदि हम 3-4 कीवर्ड्स ले लें तो हमें मुरली याद रहती है। यदि मैं आपसे पूछूं कि 25 तारीख की जो साकार मुरली चली वो मुरली याद है किसी को, 25 तारीख की साकार मुरली नहीं ना, 24 तारीख की साकार मुरली नहीं ना। वैसे ही हम यदि अव्यक्त मुरलियों का अध्ययन करते चल रहे हैं तो अच्छी बातें तो हम नोट कर रहे हैं, हमें नोट करनी भी है, चीजें भूल जाती हैं वो होता है, लेकिन यदि आपने अपनी डायरी में उसे कुछ कीवर्ड के रूप में किसी स्टोरी के रूप में रख लिया है तो आपको याद रहेगा। क्योंकि इससे पहले मैं अभी आंध्र प्रदेश में था 25th को, तो साकार मुरली पे ये कराया था, तो वो साकार मुरली मुझे याद है कुछ कीवर्ड्स उस दिन की मुरली के ले लिए थे और उसे वन लाइनर बना दिया था। और वन लाइनर ये था कि मैं बायोस्कोप देखने गया तो बायोस्कोप देखकर बहुत दुखी हो गया, और दुखी हो गया तो मैं ईश्वर का सिमरण करते करते ईश्वर की शरण में गया। ये कीवर्ड्स हैं, ईश्वर का सिमरण करते करते ईश्वर की शरण में गया, ईश्वर अर्थात बाबा ने मेरे स्मृति का स्विच ऑन किया तो मैं अशरीरी और डबल लाइट फरिश्ता बन गया। वन लाइनर है और ये 25th की अब मुरली है, साकार मुरली है। कीवर्ड्स इसमें क्या है, बाबा ने कहा बच्चे बायोस्कोप याद आया, बायोस्कोप नहीं देखना है, दुख तुम्हें मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं देना है। तो बायोस्कोप देखने गया दुखी हो गया, कीवर्ड दुख है, मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं देना है, तुम्हें ज्ञान का सिमरण करना है और शरण, तुम बाबा की शरण में नहीं आए हो, बाबा के बच्चे हो, बच्चा तो मालिक होता है, तो बाप की शरण, बाबा कहते हैं शरण नहीं बच्चे तुम मालिक हो, राइट। और स्विच बाबा ने कहा स्मृति का स्विच ऑन करो तो अशरीरी हो जाओगे, वरदान था। और डबल लाइट फरिश्ता बन करके देह की मिट्टी से ऊपर उठ जाओगे। तो 25 तारीख की मुरली भी अभी याद है, क्यों? उसे हमने वन लाइनर बना दिया। 24th की मुरली भी ऐसे ही है, जिसको चारों धामों के साथ कनेक्ट कर दिया था। वक्त नहीं है, नहीं तो उसको भी हम चर्चा कर सकते थे। हम रोज की धारणाएं ले रहे हैं, जो उन रोज की धारणाओं को भी ऐसे ही हम याद रख लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या वो धारणाएं हमारे जीवन में हैं। इस मास की जो धारणाएं ली हैं उसे भी एक स्टोरी का रूप दे दिया था हमने। जस्ट आपको एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं, क्योंकि हम जो अव्यक्त मुरलियों का अध्ययन और श्रवण करेंगे वो तो हमें अंदर से बदलेगा ही। उसके सुंदर जो महावाक्य जो मेरे हृदय को छूते हैं उसे हम अलग डायरी में लिखेंगे ही, लेकिन उस पूरी मुरली को भी हम इस रूप में रिवाइज कर रहे हैं और करेंगे, ताकि वो मुरली जब कभी भी हम एक नजर डालें तो वो मुरली हमें याद आ जाए कि इस मुरली में बाबा ने क्या कहा है। जैसे इस बार की धारणाएं जो हम लोगों ने ली हैं, रोज रोज की धारणाएं, उन धारणाओं को भी एक स्टोरी के रूप में यदि याद करना हो तो एक स्टोरी बनाई थी। वो स्टोरी ये कि एक रूठा भाई है, वो रूठ करके बैठे हुए हैं। और वो क्यों रूठे हुए हैं? क्योंकि उनका बहुत व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प चलता है। तो जब व्यर्थ नेगेटिव चल रहा है तो एक फरिश्ता आता है उड़ता हुआ और उसे करता है कि तुम वाई वाई क्यों करते हो, तुम वाह वाह किया करो। तो जब वो ये सुनता है तो उसका मन शांत हो जाता है और शांत मन से उसके मन में रहम का भाव पैदा होता है कि जैसे इस फरिश्ते ने मेरे ऊपर रहम किया मैं भी सबके ऊपर रहम करूं। और वो निकल जाता है रहम करने के लिए तो देखता है उस देश का जो राजा है अपने सिंहासन को छोड़कर अपने सीट को छोड़कर नीचे आ गया है और बहुत अपसेट है, अपसेट होके घूम रहा है इधर उधर। तो वो कहता है राजा जी आप अपसेट इसलिए हो क्योंकि आप अपनी सीट में सेट नहीं हो। राजा सीट पे सेट होता है और उसका अपसेटपन का भाव दूर हो जाता है। ये और आगे जाता है, देखता दो भाई आपस में लड़ रहे हैं लून पानी जैसे होकर के। ये उनको खीर खाने को देता है और कहता है आप लोग शीरखंड होकर के रहिए, लून पानी क्यों होते हैं। पूरे मास की धारणाओं की एक स्टोरी है, लेकिन मैंने केवल 8 दिन की धारणा आपको बताई। याद हो गई 8 दिन की धारणा कहानी के रूप में, है ना? याद हो गई? रूठा भाई नहीं बनना है। बाबा ने कहा रूठना नहीं है, ना परिवार से रूठना है ना बाबा से रूठना है। तो ठीक, कहीं मैं रूठता तो नहीं हूं किसी से? व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प नहीं करने हैं। दूसरी धारणा आ गई, कभी भी व्यर्थ और नेगेटिव नहीं, कभी भी वाई वाई नहीं लेकिन वाह वाह करना है। अगली धारणा शांत रहना है, वाह वाह किया तो वो शांत हो गया। रहम दिल बनना है, रहम का भाव जागृत हुआ, रहम करने के लिए जब वो आगे गया तो क्या देखता है? अपसेट नहीं होना है। जब सीट पर सेट नहीं होते हैं तभी अपसेट होते हैं, इसीलिए चेक करें सीट पर सेट हूं, स्वराज्य दरबार में बैठा हुआ हूं, अपने स्वमान की सीट पर सेट हूं। और कभी भी लून पानी नहीं होना है, लड़ना झगड़ना नहीं है लेकिन क्षीर खंड होकर रहना है। तो अपनी धारणाओं को भी हम ऐसे एक सुंदर स्टोरी का रूप दे सकते हैं। तो हम रोज की जो अव्यक्त मुरली रिवाइज करेंगे उसे भी ऐसी ही नवीनता के साथ। सुबह ही आपको स्वमान भेज दिया जाता है, चार्ट भेज दिया जाता है कि किन पॉइंट्स पर हम ध्यान देंगे, और साथ ही एक धारणा की बात, बाबा के सुंदर महावाक्य भी उसी से जुड़े हुए, कुछ अच्छे महावाक्य जैसे अभी कहे गए वैसे महावाक्य आप सबको भेज दिए जाएंगे। रात को हम उस पर क्विज भी, सारे दिन में मनन चिंतन भी, कोई एक पॉइंट लेकर के, धारणा पे ही विशेष वो बेस्ड होता है। रात को हम सभी 8:30 से 9:30 जुड़ करके फिर उन अव्यक्त मुरलियों का सुंदर रिवीजन करेंगे। जो आपके सुझाव होंगे उन सुझावों को भी आप उस समय दे सकते हैं। तो बेस हमारा जो है वो बेस हमारी मुरलियां हैं। तो जो मैं कह रहा था कि इसे हम 4 आधार हैं इसे करने के, जिसे लेकर हम चल रहे हैं। पहला जो कल भी आप लोगों के साथ साझा किया था, सुनना और सुनाना, पहला स्टेप। मुरली के को चार स्टेप में हम रोज ही फॉलो करेंगे अपने कारोबार को करते हुए। पहला स्टेप मुरली को सुनना और दूसरों को सुनाना। जिनसे भी हमारी बात होगी उन्हें हम जरूर एक पॉइंट उस अव्यक्त मुरली की साझा जरूर करें। दूसरा स्टेप मुरली को समझना, और समझने के लिए मनन चिंतन, जो मनन चिंतन का क्वेश्चन आपको भेजा जाए सामूहिक रूप से हम उस पर चिंतन करेंगे, और टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है उस टेलीग्राम ग्रुप पे आप उसे फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, आप में से कितने अभी भी ग्रुप में शामिल नहीं है वो जरा हाथ उठाएं, जो टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल नहीं है। ठीक है, तो आपके पास जो पेपर आ रहा है वो एक स्थान पे नहीं रखेंगे, उसे फॉरवर्ड करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। उसमें कॉलम बने हुए हैं, नहीं बने हैं तो एक कॉलम बना दें, नाम, आपका प्लेस, आपका मोबाइल नंबर और सर्विस, सेवा जो आप दे सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, और अदर एक रिमार्क वाला उसमें कुछ और लिखना चाहते हैं तो उसे सर्कुलेट कर दें, क्योंकि अभी ही आप जो भी देंगे उनको एक साथ हम शामिल कर देंगे ग्रुप में। और वैसे इसकी एक लिंक बनी हुई है, लिंक भी हम फॉरवर्ड कर देंगे, उस लिंक के थ्रू भी आप जुड़ सकते हैं। तो सेकेंड स्टेप है जिसे हम सबको करना है, समझना, और समझने के लिए मनन चिंतन करना। आमतौर पर मनन करने की आदत थोड़ी सी कम रहती है, उस आदत को हमें बढ़ाना है। बाबा ने कहा है जब तक मनन नहीं करेंगे तब तक मगन नहीं होंगे, जब तक मनन नहीं करेंगे तब तक मक्खन नहीं निकलेगा और आत्मा शक्तिशाली नहीं होगी। यदि ज्ञान का मनन सिमरण नहीं करेंगे तो फिर व्यर्थ का मनन सिमरण चलना शुरू हो जाएगा, पास्ट का सिमरण शुरू हो जाएगा। इसीलिए हमें मनन की आदत जरूर डालनी है, ज्ञान का या तो सिमरण या फिर मनन मंथन। एक समय निर्धारित कर लें जिसमें हमें ज्ञान का मनन करना ही है, और आप पाएंगे कि सचमुच जब मनन करते हैं तो ऐसा मक्खन निकलता है, ऐसी आत्मा मगन होती है, ऐसी आत्मा का तेज बढ़ता है, ऐसी बुद्धि के द्वार खुलने लगते हैं कि फिर बाकी व्यर्थ में आपको रुचि अपने आप खत्म होती जाती है। वैसे तो इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए सभी भाई बहनों का अनुभव है कि अब व्यर्थ के लिए समय ही नहीं मिलता है, और होना भी यही चाहिए। जब व्यक्ति फ्री होता है तभी मोबाइल उठाता है और फिर अपना टाइम, या फिर किसी को फोन करके यहां वहां की बातें शुरू करता है। यदि टाइम ही नहीं होगा हमारे पास, लक्ष्य में हम इतने दृढ़ होंगे तो निश्चित रूप से अपनी उन्नति करते चलेंगे। तो सेकेंड स्टेप है समझना, और समझने के लिए विचार सागर मंथन करना। थर्ड स्टेप है अनुभव करना, और अनुभव करने के लिए ज्ञान का प्रयोग करना। तो जो हम धारणा की पॉइंट लेते हैं उसे प्रयोग करके भी हम देखें कि उसे करने से क्या होता है, अनुभव करना है हमें, राइट? तो जब अनुभूति में वो चीज आएगी तब वो हमारा स्वरूप बनेगा। बात आज हो रही थी, शुरू से हो रही है ये बात, बाबा हमें स्वरूप देखना चाहते हैं। हम अवार्ड लेने के लिए पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं यहां, स्वरूप बनने के लिए। अवार्ड ऑटोमेटिक आपको मिलता है जब आप स्वरूप बन जाते हैं। अवार्ड के लिए रेस करना वो भी बहुत अच्छी बात है कि मैं नंबर वन रहूं, उसमें भी अपनी कितनी उन्नति हो जाती है, लेकिन लक्ष्य स्वरूप का है। एक बार रमेश भाई जी जो हमारे स्पार्क के फाउंडर हैं अव्यक्त बाप दादा से मिल रहे थे, तो उन्होंने अव्यक्त बाबा से पूछा कि बाबा गीता ज्ञानदाता आप हैं, श्री कृष्ण नहीं हैं, ये बात सारे संसार में कब प्रत्यक्ष होगा? तो बाबा ने कहा, बहुत सुंदर सी बात है, बाबा ने कहा जिस दिन बाबा की गीता ज्ञान, बाबा जो गीता ज्ञान सुनाते हैं, जिस दिन बाबा का गीता ज्ञान तुम्हारी जीवन में उतर जाएगा उस दिन गीता ज्ञानदाता सारे संसार में प्रत्यक्ष हो जाएगा। सी, अंडरलाइन करने वाली बात है, गीता ज्ञानदाता बाबा सारे संसार में तब प्रत्यक्ष होगा जिस दिन गीता का ज्ञान तुम्हारी जीवन में उतर जाएगा, तुम्हारे स्वरूप में आ जाएगा। तो बाबा को प्रत्यक्ष करने की जिम्मेवारी हमारी है, और वो इसे कर पाएंगे जो गीता ज्ञान को बाबा के के सुंदर पॉइंट्स को अपने स्वरूप में ले आएंगे। तो ये हमारा ध्येय है इस पूरे प्रोजेक्ट का कि हम इन चारों स्टेप्स को फॉलो करते हुए स्वरूप तक पहुंचेंगे। हमें स्वरूप बनना है, और ये नहीं कि कल हमने जो बात कर ली उसे हमने छोड़ दिया, नहीं, हम रिवाइज करते चलेंगे। ये जो स्टोरी आपको सुनाई वो इसीलिए सुनाई कि भले आप आठवें दिन में पहुंच गए हो, आप क्षीरखंड होके रहने की धारणा पर कार्य कर रहे हो, लेकिन आपको वो स्टोरी याद है कि मुझे रूठना नहीं है, मुझे व्यर्थ नहीं सोचना है, व्यर्थ नहीं या व्यर्थ या निगेटिव चिंतन से मुक्त रहना है, मुझे वाह वाह ही करना है, वाई वाई नहीं करना, इसे भी हमारे ध्यान में है, और इन सभी धारणाओं को साथ लेते लेते ही मुझे आगे बढ़ना है। ये भारी करने वाला नहीं। कोई भाई ये कह रहे थे कि कहीं हम भारी नहीं हो जाएंगे इतना कुछ करते करते। भारी होंगे, भारी होंगे, इसे हम खेल खेल में करेंगे, एक्टिविटी की तरह करेंगे, बहुत मनोरंजन के तौर पे करेंगे, और प्यार में कभी भारीपन नहीं होता। स्वामी विवेकानंद जी पहाड़ पे चढ़ रहे थे, वो उत्तराखंड में कहीं जा रहे थे, पहाड़ पे चढ़े, बड़ी खड़ी सी पहाड़ी थी, उसमें चढ़ रहे थे, थकान महसूस कर रहे थे, उन्होंने देखा एक पहाड़ी लड़की अपने भाई को अपनी पीठ पर लाद कर चढ़ रही थी। तो विवेकानंद जी ने कहा, अरे तुम्हें बोझ नहीं लग रहा है? तो लड़की ने कहा, बोझ कौन सा बोझ? उन्होंने कहा, ये जो तुम्हारी पीठ पे लदा हुआ है, ये तुम्हें बोझ नहीं लग रहा है? बोले, ये बोझ नहीं है, ये मेरा भाई है। ये मेरा भाई है, बोझ नहीं है। तो जब प्यार होता है ना, तो बोझ नहीं लगता। जब मेरा बाबा है, उनकी आज्ञा है, 1969 से लेके अब तक वो मेरा इंतजार कर रहे हैं, अब और मुझे इंतजार नहीं कराना है, अब इट्स माय टर्न कि मैं अपने आप को कंप्लीट रिटर्न, मतलब टर्न करके रिटर्न दूं, मुझे टर्न होना है, अब और नहीं। मैंने बहुत समय, संकल्प अपनी तरफ से मैंने बेस्ट किया है, लेकिन फिर भी कई स्थानों पर मैंने अपने आप को व्यर्थ से मुक्त नहीं रखा है, लेकिन अब नहीं, अब मुझे अपने समय संकल्प को पूरी तरह झोंकना है और बस लग जाना, धुन धुन लगा देनी है कि बस अब मुझे बनना ही है, बनना ही है। ये बाप समान बनने की धुन ही हमें उनके समान बनाएगी, ठीक है? तो ये चारों स्टेप्स हम इस पूरे प्रोजेक्ट में फॉलो करेंगे। यदि आप इसे इस रूप में देखें, फोर पीस के रूप में, तो फोर पीस के रूप में भी हम इसे फॉलो करने जा रहे हैं। प्रॉमिस, मुझे प्रतिज्ञा करनी है कि मुझे करना ही है, जो बाबा आज कह रहे थे, कुछ भी हो करना ही है, प्रॉमिस। और प्रॉमिस को पूरा करने के लिए हम अपनी प्लानिंग करेंगे कि कैसे हम अपनी प्रॉमिस को फुलफिल करें। प्लानिंग क्या है मेरी, आज का मेरा चार्ट क्या रहेगा, आज की मेरी स्मृति क्या रहेगी, आज की मेरी मनचर्या क्या रहेगी, प्लानिंग क्या है। केवल प्रॉमिस कर लेना पर्याप्त नहीं है, प्लानिंग, उसके बाद प्रैक्टिस, थर्ड पी इज प्रैक्टिस, एंड देन फोर पी प्रैक्टिकल लाइफ। ये फोर पीज, इन्हें हमें फॉलो करना है अपने इस पूरे प्रोजेक्ट में, ठीक है? प्रॉमिस, करना ही है, करना ही है कि दृढ़ता अपने अंदर लानी है, उसकी प्लानिंग हम सामूहिक रूप से भी करेंगे, व्यक्तिगत रूप से भी करें उसे, अपनी दिनचर्या को देखते हुए प्रैक्टिस उसकी बहुत अच्छी चलती रहे ताकि वो प्रैक्टिकल लाइफ में उतर जाए। इन चारों पीस पे हम विशेष करके वर्क करेंगे। ये हम लोगों का आधार रहेगा, बाबा की अव्यक्त मुरलियों के आधार पर, जिस आधार पर हम इसे आगे से आगे लेकर के चलेंगे। अब विशेष करके पिछले वर्ष के दो तीन भाइयों को भी मैं, बहनों को आमंत्रित करना चाहूंगा, आगे बढ़ने से पहले कि हम और क्या करने जा रहे हैं, और आपके सुझाव लेने से पहले कि आपको क्या विशेष अनुभव रहा। सोनू बहन, आप भी मंच पर आए, और टीचर्स बहने कितनी हैं इसमें, जरा हाथ उठाएंगे टीचर्स बहने। थैंक यू वेरी मच। टीचर्स बहने भी स्पेशल, यदि आपने वो भर दिया हो फॉर्म, तो भी आप लिख करके भी अलग से देंगे। हम ये चाहते हैं कि जो रात को या हमारी एक्टिविटीज चलती हैं, इसमें हमारी टीचर्स बहने और आप सभी भी पूरी तरह इन्वॉल्व रहें। आप भी सामने से जो अव्यक्त मुरलियों का रिवीजन है, अमृत वेले का योग है, नुमा शाम हम जो करने जा रहे हैं, उन सब को कंडक्ट आप सब भी करें, हमारी टीचर्स बहनें विशेष करके उसमें आमंत्रित रहेंगी और आप सब भी। केवल करना नहीं है लेकिन आपको तैयार होके कराना भी है, राइट? तो ये विशेष करके हम सबको ध्यान भी रखना है। आइए, सोनू बहन विशेष फैसिलिटेट करेंगी हमारे इस पूरे ग्रुप को। सोनू बहन के लिए एक बार जरूर तालियों से धन्यवाद भी करें। पिछले वर्ष भी इन्होंने विशेष करके सभी सुंदर फैसिलिटेशन किया और साथ ही इस वर्ष भी इसे आप सबके साथ रहेंगे और हम सब भी एक सुंदर टीम के रूप में इसे करेंगे। एक कुछ हमारे जो भाई बहने हैं उन सब के लिए भी विशेष एक ऐसा छोटा सा ग्रुप रहेगा जो ग्रुप खास विचार सागर मंथन के साथ कुछ नई नई चीजें लेकर के आएगा आप सबके सामने। अच्छा, जो अनुभव साझा करने जा रहे हैं उन्हें भी मैं आमंत्रित करूंगा कि वो भी या तो लेफ्ट साइड पे आ जाएं और या फिर राइट साइड में आ जाएं। एक दो बहने और एक दो भाई एक दो मिनट में अपने अनुभव रखेंगे। तब तक सोनू बहन इस ग्रुप और प्रोजेक्ट से जुड़ करके जो अनुभूतियां आपकी रही हैं करते हुए कराते हुए उसे आप दो शब्दों में सबके सम्मुख रखेंगे। आ जाए, लोकल चैप्टर से भी काफी भाई बहने हैं जिन्होंने किया है। सुरेश भाई आपके पास अनुभव हो, हरीश भाई, राजू भाई, जो भाई मुझे दिख रहे हैं और बाकी सब तो आप सब हैं ही करने वाले। बहनें भी काफी अच्छे से कर रही हैं जो ग्रुप में जुड़ी हुई हैं, तो बहनों को भी आमंत्रण है जो भी आकर के एक या दो मिनट में जो आपका अनुभव रहा और अनुभव के साथ अपने सुझाव को भी। भाविका बहन आप आना चाहें, आरती बहन या हमारी अन्य बहनें जो बैठी हुई हैं क्विज में पार्टिसिपेट करने वाली, वो बहनें भी आ सकते हैं जी।
ओम शांति। अपना बहुत बड़ा ये सौभाग्य समझते हैं जो प्यारे बाबा ने इस सुंदर ब्राह्मण परिवार की सेवा के निमित्त बनाया। खास करके ये नशा और ज्यादा तब चढ़ा जब सुदेश दीदी यहाँ बैठे थे और आते ही दीदी ने यही शुरुआत की थी कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो भगवान के बच्चों के रूबरू हो रही हूँ, भगवान के बच्चों से ज्ञान की लेन देन करने आई हूँ, उनके पुरुषार्थ को गति प्रदान करने आई हूँ। तब से ये चिंतन बहुत अधिक चलने लगा कि बाबा ने इस आत्मा को भी इतनी सुंदर सेवा के निमित्त बनाया। लक्ष्य ही है हम सभी का व्यक्त से अव्यक्त बनने का और सचमुच सभी भाई बहनों का। हम सेवाएं कर रहे हैं वो अलग चीज है, हम उसे नहीं देखते हैं, लेकिन भाई बहने सभी कितना डेडिकेशन के साथ, समर्पण भाव के साथ, सच्चाई सफाई के साथ पुरुषार्थ कर रहे हैं, हैट्स ऑफ टू दैट, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। चाहे हम अमृत वेले से लेकर हम हमारी हर पोस्टिंग को, जैसे भाई जी धारणा की भी बात बता रहे थे, प्रतिज्ञा की बात बता रहे थे, और सबसे बेस्ट पार्ट जो इसका लगता है रात्रि अव्यक्त मुरली रिवीजन क्लास। बहुत सारे भाई बहने, मैं समझती हूँ ऑलमोस्ट सभी आ जाते होंगे उसमें, जो रेगुलर बेसिस पर अपना वीडियो ऑन करके क्लासेस अटेंड करते हैं। एक भाई कह रहे थे, मिल गए, कहा कि बाबा को याद करते
प्यारा, योगी बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन प्यारा। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज, योग लगा कर पाप मिटा ले स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज, योग लगा कर पाप मिटा ले स्वर्ग सजा ले तू आज। योगी बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन है प्यारा।
शिव कहते हैं ये राज,
अविनाशी आत्मा सुन लो मेरी आवाज।
संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं ये राज।
तू है एक अविनाशी आत्मा सुन लो मेरी आवाज। बनो जानी बनो जो भी जीवन है प्यारा। यही ज्ञान का सार।
योगी बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन है प्यारा। योगी जीवन है प्यारा। योगी जीवन है प्यारा।
ओम शांति। तो मैं बता रही थी कि एक भाई मिले रास्ते में यहीं जाते हुए, कहा सोनू बहन रात्रि क्लास बहुत अच्छी लगती है, बस केवल एक चीज ना थोड़ा सा ध्यान देना। तो मैं भी थोड़ा अलर्ट होकर सुन रही थी कि आगे ये भाई क्या बोलने जाएंगे। कहा जब रात्रि क्लास ऑन होती है ना तो आप प्लीज वीडियो ऑन करने मत बोला कीजिए। मैंने कहा क्यों? कहा नहीं, लौकिक परिवार वाले ना बड़ा डिस्टर्ब करते हैं। मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा आप एक बार वीडियो ऑन करके बैठ जाओ, हो सकता है दो चार दिन आपको परिवार वाले थोड़ा आना जाना करें, डिस्टर्ब करें, लेकिन उसके बाद वो खुद समझ जाएंगे कि अभी इनके सामने से नहीं जाना है क्योंकि इनका वीडियो ऑन है। Am I right or not? जब तक हम ये समझते हैं ना सामने वाले हमें डिस्टर्ब करेंगे, हम नहीं कर सकते हैं, तो हम एक्चुअली नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब हम करना शुरू कर देते हैं तब सामने वाले से सहयोग मिलना भी शुरू हो जाता है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है। तो ये जो व्यक्त से अव्यक्त की ओर प्रोजेक्ट है, हमें इसमें केवल एक कदम आगे बढ़ाना है। बाकी हमारे पीछे मेहनत बाबा करेगा, मदद बाबा करेगा, हमें कुछ नहीं करना है, हमें केवल एक कदम आगे बढ़ाना है। तो सभी तैयार है ना? सभी तैयार हैं? जो नए भाई बहने जुड़ रहे हैं, बस जैसे भाई जी ने कहा ना, एक दृढ़ संकल्प करना ही है, बनना ही है, उसके बाद हमारी चिंता खत्म और उसका चिंतन शुरू हो जाएगा। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया सुनू बहन। माइक यदि सामने देंगे तो शायद आएंगे, शायद मंच पर आने में थोड़ा सा है। हाँ ठीक है भैया, माइक यहाँ सामने दे सकते हैं या ऊपर आएंगे? राजू भाई भले ऊपर आ जाइए। अब हमारे राजू भाई हैं जो, अच्छा उससे पहले भैया बोल रहे हैं, ठीक है आप वहीं से बोल सकते हैं।
ओम शांति। ओम शांति। मैनू अव्यक्त है, अव्यक्त मुली से जुड़े नूं 3 साल हो गए कम से कम। मैनू इतना बहुत अच्छा लग गया, मेरा मन खुल गया। एक समय की मैं थोड़ी सी बास न था, एक बारी मैं अव्यक्त मुरली का पहला 3 मुरली का टेस्ट होता था, 6:30 तो लेके 7:30 तक 3 मुरलियाँ करनिया बहुत औखिया सी। मैं सारा दिन ही मुरलियाँ ते लगे रहा, मैं ना खाना खाता, ना पानी पीता, ना चाय पीता था। मैं 3-3 घंटे 4-4 घंटे 3 मुरलियाँ जिन्ना तक मेरा पूरिया नहीं होंदिया था, और जो रमेश भाई ने मैं खंड खीर ही हो जाता था। ठीक है, जो मेरा शाम को टेस्ट होता था ना, मैंने पहले महीने मेरे 56 नंबर ही आए मार्क्स। मैनु बहुत दुख होया, क्यों होया भी मेरे नंबर है, मैं सारा दिन ही खराब करता, मेरे बाबे इतने विद्या क्यों? मैंने सोचा भी अगले महीने तक मैं नियर अबाउट 18 नंबर लेने ही लेने। मैं ऐसे सोचिया बाबा ने कहा बाबा गल सुन ला मैनू क्यों दबिया थले। जो मैं उपर उठा मैं मुलिया का तिने मुलिया कदे दो दे तेरे कदे तीन भी देते थे एक घंटे के लिए टेस्ट होता 15 मार्क्स होते थे उसके 15 क्वेश्चन होते थे मतलब 100 नंबर का ही होते सर थे मनन चिंतन। जो मैं सोचा भी ऐसे करना है मैं लग्या नहीं सुबह लग
गया
दोपहर तक
पंजाबी में बोल रहे हैं हिंदी में बोलिए हिंदी में
नहीं थोड़ा पंजाब करके मैं पंजाबी में बोल लूंगा।
वैसे आपका भाव सब समझ गए मुरली के लिए आपका डेडिकेशन।
मैं हिंदी बोलूँ कुछ हिंदी बोलूँ कुछ पंजाबी बोल दूंगा ठीक है जी। जब हमने मुरलियां टेस्ट अगले महीने दिया मैंने मेरे अगले महीने से 88 नंबर मार्क्स आ गए एक महीने बेहद वन मंथ सर। फिर भी मैंने ऐसे लगा भी नंबर बहुत कम है। मैं शाम को रोटी नहीं खाई मैं बाबा ने कहा बाबा मैं तेन गुड नाइट करूंगा मैं गुड नाइट बाबा नू कह के सौ गया पर मैं नींद नहीं आई भी नंबर कम है। एक बजे तक मैं सुता नहीं है जो सुबह उठा मैं जो अमृत वेला किया मैं डेली 3 बजे उठता हूँ। जो मैं 3 बजे उठ के अमृत वेला कर लग गया मेरे अंदर क्या कीड़िया चलन लग गई सारे अंदर कीड़े सामते हो ना चरमन रन होने लग गए शरीर तो नीचे तक। मैं तो आख्या ये तो बाबा ही आ गया मेरे अंदर इतना नंबर दे दिया कमाल होगी। मैं फिर भी बाबा ने मैं मनिया जिन्ना तक बाबा मैं आपके समान नहीं बनना ना मैं कभी नहीं छोड़ूंगा आपको। क्या होया अगले महीने फिर जून का महीना होगा जून के महीने का टेस्ट दिया मैं मनन चिंतन किया मेरे 100% मनन चिंतन से नंबर आ गए।
बात सुंदर।
फिर मैंने चार्ट भेजा मनन चिंतन भेजा मुरलियां ने टेस्ट देने कीते एंड तक मेरे हुण तक अज तक 2024-25 तक 92 नंबर की मार्च आए है। हवे भी बहुत काम है इसे है आज बाबा तो पूछा बाबा मेरे 100% दो ईसन तक दईया से ना दीदियां को तगमे दिए थे अगली बार अगले साल मैं 25-26 वास्ते 3 तगमे लेंगे आप तो बाबा आपकी मर्जी है। मैं इसे बहुत संकल्प लिया बाबा दे भी 3 तगमे आने ओम शांत।
थैंक यू वेरी मच। एक बार जोरदार तालियां इनके उमंग के लिए। इसको ही धुन कहते हैं ना। एक बात जरूर ध्यान रखें जैसे सनुबेन भी कह रही थी यदि हिम्मत का कदम हम बढ़ाते हैं हमारी अंदर की लगन को देखकर बाबा की मदद भी हमें विशेष मिलती है। इसीलिए हम बस हिम्मत से कदम बढ़ाएं कि हमें करना है बाबा की विशेष मदद मिलती जाती है और उन्नति होती जाती है। और कल भी दीदी भी कह रही थी यदि हम योगी बनते जाते हैं तो ऑटोमेटिक योग्यताएं भी बढ़ती जाती हैं। तो योग युक्त होकर हिम्मत का कदम बढ़ाएं योग्यता मार्क्स परसेंटेज सब कुछ बढ़ते जाएंगे। शुक्रिया आपका राजू भाई। एक मिनट में ही अपना अनुभव साझा करेंगे क्योंकि सुझाव भी सभी का लेना है। और कौन बहन है पुष्पा अग्रवाल बहन भी हों तो वो भी सामने आ जाए।
ओम शांति। मैं जब से इस प्रोजेक्ट में जुड़ा हूँ ये प्रोजेक्ट जब से चालू हुआ तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ भाई। और इस प्रोजेक्ट में जुड़ने के बाद और जो अभी पिछले एक साल अव्यक्त से व्यक्त की ओर जाने का इसके पहले मेरे पास पूरा 69 से अप टू डेट मुरली है। मुरली हम पढ़ने का समय नहीं मिलता हम पढ़ने के लिए रखे थे भाई जी। लेकिन मैं आपको बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ बधाई देता हूँ और जो भी बातें हैं विधाई संबंधी वो मैं आपको कहता हूं कि मुरली पढ़ने का मौका नहीं मिला लेकिन एक साल हो गए एक भी दिन एक भी मुरली मैंने अव्यक्तवाणी मिस नहीं किया है। और एक एक मुरली में बहुत गहराई रहता है। मैं आपको बता रहा हूं जो मुरली जब पढ़ता था तो अच्छी बात हो तो मैं अपनी बड़ी बहन जी को भी भेज देता था भाई जी और लाइन को अंडरलाइन मैं मेरे पूरा पुस्तक अंडरलाइन भरा हुआ है और अलग अलग जहां अर्थात शब्द आता है तो अर्थात को अलग कलर कर देता हूं कहीं लाल पेन से कहीं कहीं कुछ कहीं बाबा ने जो बात कहा है वो। तो हकीकत में भाई जी ने कहा हमें अपनी दृढ़ता लानी है अपने कार्य को करने के लिए थोड़ा सा मेहनत करने पड़ेगा फिर बाबा का मदद मत पूछो कितना मिलता है कि आप कुछ भी कर सकते हो। हमारी युगल है हम दोनों पेपर देते हैं वो बोलते आप तो सेंटर के सेवा में बिजी रहते हो, पता नहीं कब आते हो कब उत्तर भेज देते हो। वो भेज देती अपना, लेकिन मैं बाद में भेजता हूँ। तो बोलते हैं आप नकल नहीं कहलाएगा आपको, बोले मतलब नकल भी हो सकता है क्योंकि मिलता जुलता हो सकता है, लेकिन मैं नकल तो नहीं कर रहा हूं ना। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रोजेक्ट से जुड़ने से हमारा सफलता निश्चित है। अब बुद्धि का लाइन क्लियर, बहनों से भाइयों से संबंध अच्छे, सेंटर के भाई बहनों से संबंध बहुत अच्छे मधुर बन जाते हैं। क्योंकि भाई बहन एक दो बार हमसे पूछे कि आप भेजते हो तो हमको भी उत्तर भेजो ना, हमारे क्लास के भाई लोग, तो मैंने उनको भेजा तो वो वाहवाही लेते हैं, लिखते हैं बहुत बढ़िया आपने बहुत अच्छा किया, ये हमने मैं भेजता हूँ हर भाई बहनों को, जो कहते ना उनको भेजता हूँ। कई लोग, तभी मैं ट्रेन से आ रहा था ना, अभी बाबा के सेवा हम 21 तारीख को आए थे 9 तारीख है, तो उसमें बोले आप प्रश्न उत्तर ट्रेन में बना के भेज रहे हो। हाँ हम भेजेंगे, हमारा चिंतन है हम भेजेंगे। तो जब कॉपी को देखे मेरे पेपर को तो हमको दो पढ़ने के लिए। कह रहे बोले हमको कौन बनाया इस योग्य, सवाल ये है हमें इस योग्य किसने बनाया। तो एक तो पहला मैं बाबा को तो थैंक देता हूँ, बाबा ने बनाया, लेकिन इस पार्क विंग ने भी हमको बनाया।
थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया राजू भाई। एक एक मिनट में अपने सुंदर अनुभव रखेंगे। आइए सुरेश भाई। शुक्रिया शुक्रिया राजू भाई,
बोलो। आइए सुरेश भाई। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं एक ग्रामीण भाग का आदमी है, मुझे अच्छी हिंदी बोलने नहीं आता भाई साहब, अंग्रेजी की कोई बात भी नहीं। मैं आयरनी बोलने वाला है, ते तुम मेरी आयरनी भाषा को खुश हो, तुमको खुशी आओ ना आओ, पर मुझे आयरनी बोलना है। जब दिन से मैं बाबा का हाथ पकड़ा है, वह दिन से आज तक पर्यंत मेरी मुरली एक भी दिन खंड नहीं है, एक भी दिन खंड नहीं। पाउस पड़ो, बीमारी हो, कुछ भी हो, और मुरली जब बाबा पढ़ता है तो पुरसा जो वाक्य है ये मेरी बुद्धि में टच हो जाता है, लगे मैं उत्तर दे सकता है। यानी जो मैं भी मुरली के कोई पाइप पूछे तेरी मैं बोल सकता है, इतनी मेरी धारणा अच्छी बाबा ने बनाई है। और दूसरा युक्ति, जैसा बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा है वैसा मेरा अमृत वेला खंड हो गया, ऐसा मुझे आठा भी नहीं है, इतनी मेरी बाबा ने विशेषता दिखाई है। मैं हिंदी अच्छी नहीं बोलता, इसलिए नहीं तो ज्ञान बाबा ने इतना भरपूर मुझे दिया है कि मैं क्या बोलूं क्या नहीं ये भी मुझे समझ में नहीं आ सकता। क्योंकि जब ने बाबा ने मुझे एक दिन ऐसा अनुभव आया कि मैं अमृत वेले 3:30 बजे बैठ गया, तो वह दिन बाबा ने एकदम मेरी ऐसी खेस लिया, मुझे परम धाम में ले गया। अनि बाबा ने मुझे ऐसा टचिंग किया कि बच्चा तुम घबराना मत, तुम अच्छे नहीं बोलते पर तुम बोल सकते, तुम हिम्मत रखो, हर बात में हिम्मत रखे कि तू आगे बढ़ेगा। हे मेरा भी स्वयं का विश्वास है, यानी बाबा ने मुझे विश्वास दिलाया है, इसलिए
थैंक यू आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही खूब आगे बढ़िए। थैंक यू। प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ ही एक मिनट का अनुभव सुनाइएगा।
ओम शांति, हम नासिक से हैं, नासिक के लोकल चैप्टर नासिक के कोऑर्डिनेटर। हम जब से विंग में जुड़े हैं, बहुत साल 10-12 साल हो गए, तब से हम भाई जी का मतलब सूरज भाई जी और रुपेश भाई जी इनके ही प्रोजेक्ट हमने फॉलो किए। तो व्यक्त से अव्यक्त को और उसके पहले फॉलो फादर के अंडर सब चल रहा है। तो करीबन नासिक में 300 से भी ज्यादा स्पार्कलर्स इसमें ज्वाइन हुए हैं, क्योंकि और जो भी मुरली का मंथन चलता है उसका हम प्रयोग, ये भी योग के प्रयोग भी करते हैं, जो मुरली भेजी जाती है उसके योग के प्रयोग भी होते हैं। हर हफ्ते में एक सेंटर रविवार को होता है, एक सेंटर गुरुवार को होता है, मतलब हर हफ्ते में 4 सेंटर्स में हमारी योग भट्टिया चलती है निरंतर, अभी भी कभी खंडित नहीं हुई। और 2 साल पहले नासिक में मनोहर भाई तांबे और मुग्धाबेन तांबे, इन दोनों को मुरली स्वीट्स का फर्स्ट और सेकंड प्राइज मिला है। तो नासिक में बहुत सारे भाई बहने मुरली क्विज को जुड़े हैं, और मैं एक सुझाव करता हूं कि आप संगठन में हर शहर में हर गांव में योग के प्रयोग करें, जो मुरली द्वारा मुरली में आते हैं उनके द्वारा योग के प्रयोग कमेंट्री तैयार करें, संगठन में भट्टिया और मीटिंग जरूर ले, क्यों नासिक में हमारी हर सेंटर में हर हफ्ते, मतलब चार सेंटर में हर हफ्ते अलग अलग दिवस पर यह भट्टिया चलती है, और जो भी मटेरियल भेजा जाता है उस पर मंथन होता है। भाई जी का और सूरज भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि नासिक में इसकी बहुत बड़ी लहर आ चुकी है, और हर हफ्ते में ये किया जाता है, उसका फीडबैक भी लिया जाता है। और एक हमने और एक सकाश सेवा ग्रुप शुरू किया है, हर बुधवार को 5:30 to 7:30 व करीबन 100 ब्राह्मण इकट्ठे होते हैं और वो सकाश सेवा करते हैं। और एक दूसरी बात, हमने बेंगलोर भट्टी में रुपेश भाई जी की जो शिव पार्वती की शादी की, हमने हर सेंटर में ये शादी कराई। ओम शांति।
थैंक यू, बहुत सुंदर। बाबा की ये सुंदर अनुभव प्रेरित करते हैं। बहनों में से कोई एक यदि आए तो आप आए, बाकी उससे पहले कि बहनें आए अनुभव के लिए, आइए आइए। सभी ने जो आपको ये फॉर्म मिला वो फिलअप कर दिया, जो पेपर मिला था वो मिला नहीं? अच्छा, इधर लेफ्ट साइड पे जो पेपर है वो जरूर दीजिए। वीणा बहन है पीछे, है नहीं यहाँ सामने, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास, सामने एक सर्कुलेट कीजिए, एक या दो पेपर, व्हाइट पेपर, ब्लैंक पेपर लीजिए पीछे से, और कॉलम्स बना करके यदि इसमें जगह है तो इसको यहाँ सर्कुलेट कर दीजिए। हाँ प्लीज आइए रमेश भाई। आप हमारे रमेश भाई हैं 40 गांव से, वो भी अपना अनुभव साझा करेंगे।
ओम शांति। फॉलो फादर प्रोजेक्ट 5, हम 5 साल से हमारा 40 गांव लोकल चैप्टर इस प्रोजेक्ट में सहभागी। जैसा भाई जी ने कहा कि सुबह से शाम तक अगर बिजी रहना है तो ये प्रोजेक्ट सबसे अच्छा है कि हमें व्यर्थ से मुक्ति मिलती है, सबका अनुभव है। तो सुबह अमृत वेले से लेकर शाम तक हम जब जुड़ते हैं तो हमारे बहुत सारे भाई बहने जो 50 के ऊपर है उम्र में, और वो टेक्नोस नहीं है, कभी कभी अगर अनम्यूट करो बोला ना तो म्यूट और अनम्यूट उनको मालूम नहीं रहता है कि क्या करना होता है। कभी कभी बाहर के गली के कुत्ते भूखते हैं ना, वो उसमें आवाज आ जाता है। तो ये जो टेक्नोस नहीं है ना, वो थोड़ा अलग बात है, लेकिन सबको ये आना चाहिए। हमारे चंद्रकांत भाई है, उम्र है उनकी 82 ईयर्स, और 82 ईयर्स में वो व्हाट्सअप चलाना, टेलीग्राम चलाना बहुत ईजी सीख गया अभी, और वो मुरली क्विज में पार्टिसिपेंट भी करता है। मेरा अनुभव अभी यह है कि सूरज भाई जी ने कल हमारे झूम मीटिंग में कहा था कि हमें 4 बल जमा करने हैं, हम करते हैं, लेकिन वो कौन कौन से है तो वो उन्होंने बताया था। पहला जो बल था हमारा ज्ञान बल, तो हमारा अव्यक्त वाणियों का अभ्यास हम कर रहे हैं। जैसा भाई जी ने कहा कि किताबें सब हमारे घर में है लेकिन हम पढ़ नहीं पाते, लेकिन जब ऑडियो मुरली हम मुख से सुनते हैं रूपेश भाई जी को, इतना अच्छा लगता है। कई माता ऐसे होते हैं ना, किचन में पका रहे खाना तो भी ऑडियो लगा देते हैं, कभी बाहर ड्यूटी पर जा रहे तो भी लगा देते हैं, आप ट्रेन में सफर करते हैं तो भी लगा देते हैं। तो ये ऑडियो मुरली भेजना है भाई जी, बहुत अच्छे रहते हैं, और उनसे हमें वो पूरी मुरली हमारे जहन में बैठ जाती है। दूसरा, प्योरिटी का बल हमको बढ़ाना है, क्योंकि हम प्रकृति को सकाश देने की जरूरत है, तभी हमारे प्योरिटी का बल वो प्रकृति के लिए काम में आ सकता है। जब हम प्योरिटी रहेंगे, पवित्रता रहेंगे, तभी हमारा तीर लग सकता है। और तीसरा पॉइंट बोला था योग, और योग तो पूरा प्रोजेक्ट में 5 साल में योग पर ज्यादा बल दिया है, और योग हम कर सकते हैं। हमारे में भी हम 15 दिन में, 1 महीने में सभी लोकल चैप्टर वाले, हमारे जितने भी मेंबर्स है जमा होकर हमें अभी योग का प्रयोग बढ़ाना है और श्रेष्ठ संकल्प करना है। ये 4 बल हमें जमा करने के लिए इस प्रोजेक्ट में जुड़ना बहुत जरूरी है। अभी भाई जी ने कहा कि क्विज में हमको मार्क्स कम मिलते हैं, और भाई जी ने कहा कि हम विनर लेने के लिए ये प्रोजेक्ट में सहभागी नहीं होना, क्योंकि हम जब आगे बढ़ेंगे हमें अंतिम लक्ष्य है कि बाप समान बनना ही है, तो बाप के जो पॉइंट्स है वो हमारे अंदर आए, इसके लिए एक क्विज एक माध्यम है। तो अमृत वेले से लेकर शाम तक जो भी जूम मीटिंग होती है, मैंने आदरणीय सोनू बेन से कहा था कि आप जो एक सेंटेंस उसमें ऐड करते हैं, तनुजा दीदी या तो सोनू बेन, कि पर्दे के अंदर जो होनहार देवता है उनको पर्दा खोलो, ये वाक्य पर हमको हंसी आती है दीदी। ये मैंने बोला था कि आप जब बोलते हैं ना, सच में हमें ना जब हमारे समझो पार्टिसिपेंट 150-200 जूम मीटिंग में जुड़ते हैं तो वीडियो ऑन करने वाले बहुत सारे कम होते हैं, और दीदियों जब होते ना आप मुरली के पॉइंट्स लिखो चैट बॉक्स में डालो, अभी चैट बॉक्स हमको मालूम नहीं, हाथ उठाओ हमको वो मालूम नहीं रहता, फिर इसके लिए कहीं हमारे बुजुर्ग माता या तो बहने उनको वो समझ में नहीं आता कि हमको क्या करना है, वो थोड़ा सा सीख जाएंगे बराबर कि हैंड रेज करो या तो म्यूट करो, ये सब बातें जो होते हैं ना जूम मीटिंग में ज्यादा चलती। तो जूम ऐप रहता है, वो ऐप डाउनलोड करने के बाद में बहुत इजी चलाने लग गए सभी, ये बाबा की कमाल है कि हम भी टेक्नो से ही बन गए।
थैंक यू रमेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
चलो अच्छा, ओम शांति।
40 गांव में भी हमारे अच्छे 40 स्पार्कलर्स हैं, नासिक में 300 भाई बहने कर रहे हैं। अच्छा, कल के लिए, कल सुबह मोस्टली हमारा लक्ष्य है, क्योंकि कई लोग दोपहर को जा रहे हैं जो विनर्स हैं हमारे गॉडली स्टूडेंट ऑफ द ईयर हैं, तो कल मॉर्निंग में विचार है कि हम मुरली क्लास के बाद जो विनर्स हैं उन्हें और लोकल चैप्टर, जो लोकल चैप्टर कोऑर्डिनेटर्स हैं, जैसे अभी हमारे सुरेश भाई जी आए, रमेश भाई जी आए, वैसे ही लोकल चैप्टर वाले कितने हैं, हाथ उठाएं जरा, लोकल चैप्टर कोऑर्डिनेटर्स। अच्छा, संगीता दीदी बैठे हुए हैं, और लोकल चैप्टर कोऑर्डिनेटर्स जिन्होंने नाम भेजा था, क्योंकि लोकल चैप्टर जिन्होंने, कईयों ने बहुत अच्छा जो वर्क किया है, हो सकता है कुछ लोकल चैप्टर के ग्रुप में चेंज हुए हों, तो लोकल चैप्टर कोऑर्डिनेटर्स भी कल सुबह रहेंगे, विनर्स भी रहेंगे, पार्टिसिपेंट्स जो रहे हैं हमारे क्विज के और इन सब के, उनके लिए हम अनाउंस करेंगे, अलग से आपसे मिलेंगे, लेकिन स्पेशली कल लोकल चैप्टर कोऑर्डिनेटर्स और जो विनर्स हैं उन्हें आदरणीय अंबिका दीदी, श्रीकांत भाई जी और अलका दीदी सभी हमारे बड़े उपस्थित रहेंगे, आपको मंच पे सम्मानित किया जाएगा। और ये पूरे वर्ष का पारितोषिक आप देख रहे हैं जो हमारे भाई बहने इतनी लगन से करते हैं, उमंग से करते हैं, उसका एक छोटा सा कहें टोकन ऑफ लव है, टोकन ऑफ रिस्पेक्ट है, टोकन ऑफ अप्रिसिएशन है, जो इस मंच से दिया जाता है और जो हमें भी प्रेरित करता है कि हम भी ऐसे दिल से लग करके अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाएं। और ये भी एक लक्ष्य है ना कि हम विन करेंगे, तो जब ऐसे विन करने का लक्ष्य लेकर के करते हैं तो एवरी डे हम कहीं पे भी रहें, किसी भी कोने में रहें, बस में रहें, अपने संबंधियों के यहां रहें, लेकिन फिर भी चार्ट भरना या फिर क्विज करना हम नहीं छोड़ते, क्योंकि हमारे लक्ष्य में शामिल होता है। तो इन सब के लिए भी बहुत सारी दुआएं हैं और बधाई हैं, तो कल आप जरूर इसमें शामिल रहेंगे। अच्छा, आइए, आप सुनाने वाले थे या माइक नीचे दे रहे हैं, आइए आ जाए हमारी एक दो बहने, टीचर बहने भी यदि आना चाहें तो एक या दो बहने, अच्छा हमारी बहन भी शामिल है, आ जाए, आप दोनों ही आ जाए, आइए एक एक मिनट में अपनी बात रखेंगे। अच्छा, बाकी सबका हो गया जिन्होंने स्लिप भरना है, अच्छा वो सर को जरूर ये फिलअप कर दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद फिर हम हमारी मुलाकात इस रूप में हो ना हो तो आप वो फिलअप करके जरूर दीजिएगा।
पहले पहले सभी को नंबर आ दे, नए वर्ष का मुबारक दे रहे हैं, आज हमारा चौहर है और मेरा अनुभव सुना रहे हैं। मैं 8 महीने पहले इससे जुड़ी हुई है, पहले मुझे कुछ भी पता नहीं है इसके बारे में। एक दिन हमारे टीचर बहन ने व्हाट्सएप में भेजा था, मैंने पूछा ये क्या है, अब करके देखो बोला, तब से मैंने शुरू किया, थोड़ा थोड़ा करते, मुझे फोन के बारे, मोबाइल के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। एक दो महीने पहले मैंने तो कुछ दिन ही कर दिया, उसमें 27% आया, फिर बाद में दूसरी महीने में 67% तक पहुँच गया। वो टेलीग्राम ऐप में भेजना मुझे पता ही नहीं है पहले, फिर बाद में दूसरों से पूछते सीख लिया, अभी 95-96% तक पहुंच गया। लेकिन अनुभव की बात क्या है,
मैं इसके जुड़ने के बाद 3-4 महीने के बाद मेरा गांव का बहुत परीक्षा आने शुरू हो गया। घर का परिवार में भाई जी का माता जी है, उनको तबीयत ठीक नहीं है, वो गिर गया था, वो सिर का चोट लगा, वो बार बार गिरते रहते हैं, उनका सब कुछ सुधार करना पड़े, दिन रात सेवा ही सेवा में जुड़ना पड़े, नींद भी त्याग करना पड़े, फिर भी मेरे अंदर से यही धुन है, ये पुरुषार्थ करना ही है। एक दिन ऐसा है, एक दिन उनको हॉस्पिटल में लेके गई, टाइम 7:30 बजे से 8:30 बजे के अंदर क्विज भेजना है, वहाँ हॉस्पिटल में 8:25 तक हो गया, फिर वापस आने के समय 5 मिनट बच गई, उसी समय में मैं क्विज भर करके भेज दिया कार में बैठ के। ये सब अनुभव की बात है, लेकिन ये सब बढ़ते बढ़ते मेरे अंदर कुछ भी बोझा नहीं महसूस हो रहा है, सब कुछ काम करते रहे, प्यार से कर रही है, माता जी को भी सब सेवा ये करते हैं, माता प्यार से ही कर रही है, ये बोझ नहीं महसूस हुई है। ये बहुत बड़ा भाग, ये इससे मुझे क्या पता है, जो हम पुरुषार्थ करते हैं वो अंतिम समय की तैयारी के लिए ही करते हैं, अंतिम समय में और भी परीक्षाएं आने वाली हैं, उसके लिए हमें रेडी रहना है, ये है हमारी अनुभव है। और भी अनुभव बहुत हैं, लेकिन समय नहीं कम है। इसमें 3 हमारे परीक्षाएं, इसको परीक्षा करने के लिए भी बहुत बारी आतंक आया, वहाँ गांव में रहना पड़ा, मोबाइल नेट कनेक्ट नहीं होता, बाहर आना पड़ता है, और सुनने के भी अंदर काम रहती है ना, वो ठंडी का मौसम है, बाहर आने के लिए रात को सुबह को नहीं होता था, फिर भी हमारे अंदर की वो भावना करना ही है, जब थोड़ा समय मिले तब बाहर जाके कुछ ना कुछ करते जाते हैं, ऐसा ऐसा करते करते 96% तक पहुंच गई, लेकिन एवरेज में देखने से 72% आया, क्योंकि पहले 2-3 महीने थोड़ा कम हो गया ना, इसलिए ये भी परसेंटेज के बाद को मैं नहीं देख रहे हैं, अंदर से परिवर्तन स्वउन्नति के लिए स्वपरिवर्तन के लिए मैं कर रही हूँ, यही मेरा बहुत अच्छा अनुभव है। थैंक यू भाई जी, सोनू बहन जी, हम रोज सोनू बहन जी का याद करते हैं, क्योंकि सब प्रकार की सुविधाएं उनके नाम से आती है ना, वो जी थैंक यू।
स्थान बता दीजिए,
नाम अम्मा जी
सबकी अम्मा,
विजयवाड़ा से, भाषा भी अलग है ना हमारा,
भाषा भी
तेलुगु है,
तेलुगु लैंग्वेज है, लेकिन फिर भी 96%
ज्यादा कर नहीं पाती, फिर भी कोशिश करके करते रहते हैं। ओम शांति,
तालियां जोरदार बजाएं इनके लिए जी। वीणा बहन आप भी मंच पे राजे, आई आई
शांति सबको,
बोलिए पास लीजिए, बोलिए नजदीक लीजिए।
हेलो,
हाँ आ रही आवाज आ रही।
अच्छा, ओम शांति। सबसे पहले तो भाई जी को और सोनू बहन को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतनी बढ़िया क्लास शुरू करी। 1.5-2 साल मुझे हो गया क्लास ज्वाइन करे हुए, लेकिन मैं एक ऐसी चीज थी जो मतलब 10 साल से भी मैं उसको बदल नहीं पा रही थी, वो मैं बदल गई अपने को। मतलब मैंने बाबा से भी 10 बार यही कहा कि बाबा आप जानो आपका काम जाने, परंतु मैं इस चीज को नहीं बदलूंगी, मैं ऐसे ही रहूंगी, लेकिन वो चीज बदल गई मेरी और मैं बहुत खुश रहने लगी। क्लास तो बहुत इफेक्टिव भाई है, मैं सबसे यही कहूंगी कि इस क्लास को ज्वाइन करें, और अब मैं अपने संपर्क में भी सबसे कहती हूँ, और जो क्लास मुझे बहुत अच्छी लगती है वो मैं अपने बच्चों को भी भेजती हूँ, और जितनी भी टीचर्स बहनें हैं जिन्होंने हमारी क्लास ली आज तक, एक से एक बाहर विदेशों तक से सब ने हमारी क्लासें ली, बहुत अच्छी अच्छी, मतलब मैं मतलब हर क्लास मैंने बिल्कुल पूरी वीडियो खोल के ली थी, बाकी लास्ट में अभी कुछ समय से 2-4 क्लास मेरी रह गई।
बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। देखिए जो बात मैं कह रहा था वो बात कि बाबा की मुरली सुनते सुनते परिवर्तन होता जाता है, बाबा की कोई ना कोई ऐसी बात हमारे हृदय में उतर जाती है जो 10 साल से कोई बात अब हमने पूछी नहीं, और वैसे पूछना भी नहीं चाहिए, लेकिन जो बात 10 साल लग गए बदली नहीं, लेकिन बाबा की मुरली से 6 मास में ही वो परिवर्तित हो गई। सचमुच ये बाबा की ही कमाल है, बाबा की मुरली की कमाल है। और मुझे लगता है मुरली एक ऐसा जादू का काम करती है हम सबके लिए, जो पूरा हमारा रूप ही परिवर्तित कर देती है, जिसको हम सुनते सुनते महसूस करेंगे। और एक चीज ये भी कि केवल वो सुनने तक हम नहीं रखेंगे, लेकिन उसकी बहुत गहराई, नवीनता पूर्वक उसे सुनना, नवीनता पूर्वक याद रखना, नवीनता पूर्वक धारणाओं की गहराई में जाना, इस वर्ष हम उन सब पर भी कार्य करेंगे। और ये नहीं जो मंच पे आप देख रहे हैं, जैसे बाबा नंबर 1 स्टूडेंट रहे हैं, केवल उनका फोटो हम रखते हैं वो गुरु के रूप में नहीं, लेकिन एक स्टूडेंट के तौर पे हमारे साथ रहते हैं, वैसे ही हम सब स्टूडेंट हैं और सभी टीचर्स भी हैं एज वेल। तो आप सबको भी इसमें उसी रूप में पार्टिसिपेट करना है कि मैं टीचर भी हूं और नंबर 1 स्टूडेंट भी हूं। आपके सारे सुझाव जो भी अच्छे से अच्छे हैं वो सब ग्रुप में जरूर दीजिएगा, हमारी टीचर्स बहनें भी और सभी हमारे पुराने नए भाई बहनें भी। हम सबको मिलकर अच्छी से अच्छी बातों को इम्प्लीमेंट करते हुए अपने चारों ही सब्जेक्ट, चाहे वो ज्ञान है, योग है, धारणा है, सेवा है, उन चारों को लेते हुए आगे से आगे अपनी अव्यक्त स्थिति की ओर बढ़ना है। तो हरेक रिस्पॉन्सिबल समझे और हरेक इसके अपने आप को निमित्त समझे। केवल कुछ 8, 10, 4, 5 भाई बहने निमित्त नहीं, लेकिन मैं निमित्त हूं सबको व्यक्त से अव्यक्त बनाने की ओर ले चलने के लिए, ऐसा जरूर समझे।
ओम शांति। मैं कुमारी विनीता अजमेर से। जिस प्रकार से ये मुरली मंथन अव्यक्त जो चलता आया है, जैसे लंदन की दीदियां भी आई, यूएसए की दीदियां आई, उन सब से अलग अलग अनुभव, जो जिंदगी में ऐसा लगता है कि नहीं, उनसे हमें मिला, हमने हमारी जिंदगी में धारण किया। और जैसे मैं बहुत पहले मतलब अशांत मन रहता था, तो अव्यक्त मुरली सुनते ही एक तो ये हुआ कि मन शांत होने लगा, और फिर नवीनता आई कि पहले मैं कमेंट्री लिख नहीं पाती थी, अब लिखती हूँ और खुद की बनाई हुई कमेंट्री पे योग करती हूँ। तो अव्यक्त मुरली से एक ये भी नवीनता आई। फिर कभी मतलब ऐसा हो जाता था कि जो टचिंग नहीं हो पाती थी वो भी बहुत अच्छे से होने लगी। तो भाई जी का और सोनू बहन जी का थैंक यू, तहे दिल से थैंक यू। ओम शांति।
शुक्रिया तो बहुत बहुत प्यारे बाबा का है, हमारे बड़ों का है, आदरणीय सूर्य भाई जी का है। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है इसमें आप क्यों जुड़े। तो बड़ी से बड़ी बात, एक तो सीधे सीधे बाबा के महावाक्य से इस पूरे प्रोजेक्ट में पुरुषार्थ हो रहा है। तो बाबा हमारे गाइड हैं, उनकी मुरलियां हमारा पथ प्रदर्शन कर रही हैं, ये एक बात। कि सीधे सीधे अव्यक्त बाप दादा से, प्राणेश्वर बाबा से हम जुड़े हुए हैं, एक मार्गदर्शन हमारी मुरलियां हैं, तो बाबा गाइड हैं। उसके बाद सूर्य भाई जी, जिनके पास इतने वर्षों का गहन अनुभव है, जिनकी क्लासेस सुन के हम सब आगे बढ़े हैं, वो हमारे गाइड हैं, वो हमें एक सुंदर नेतृत्व दे रहे हैं, वो हमें गाइड कर रहे हैं, और समय प्रति समय जुड़ करके उनके नेतृत्व में ही ये सुंदर प्रोजेक्ट चल रहा है। तो भारे बाबा भी, आदरणीय सूर्य भाई जी भी, और यहां तक ही नहीं लेकिन पूरे ही विश्व भर के जो हमारे बड़े हैं, यज्ञ के बड़े हैं, वो सभी रोज हमसे जुड़ते हैं और वो जुड़ करके अपने अनुभव देते हैं, वो जुड़ करके मुरली की गहराई में ले चलते हैं, वो जुड़ करके हमारी स्थिति को ऊंचाई दे रहे हैं। ये इस प्रोजेक्ट की बहुत सुंदर एक विशेषता है। तो जहां इतना सुंदर ज्ञान की बरसात हो रही है, हमारे सभी बड़े हमें तराश कर अव्यक्त बनाने के सुंदर पुरुषार्थ में लगे हैं, इसलिए मैं हमेशा आमंत्रित करता हूं कि हम सब बहुत बहुत लकी हैं कि हमारे सभी बड़ों बाबा सहित हम सबको इस सुंदर पुरुषार्थ को कराने में लगे हुए हैं। तो अहो सौभाग्य तो मानते हैं ना इस बात को लेकर के, तो हम सबका सचमुच बहुत बहुत अहो सौभाग्य। अब हमारी बहन अपना अनुभव सुनाए, उसे पूर्व वीणा बहन भी हमारे साथ हैं, जैसे सोनू बहन जी, वीणा बहन, डॉक्टर वीणा बहन जामनगर से हमारे साथ हैं। बुक की लॉन्चिंग में आपने देखा होगा, बुक की सुंदर लॉन्चिंग में भी जो बुक बनी पूरे वर्ष के पुरुषार्थ
के साथ, उसमें इनका विशेष योगदान रहा, अन्य सेवाओं में भी विशेष योगदान रहता है। ऐसी ही हमारी सुंदर टीम है, जिस टीम में भी अन्य हमारे सदस्य हैं, दीप्ति बहन हैं, हमारी अन्य बहनें हैं, वो सब भी इन सुंदर सेवाओं से जुड़े हुए हैं। तो ये पूरा एक परिवार है, पूरी टीम है, आप सब इस टीम के सुंदर सदस्य हैं और हम सबको ही मिलकर के इस सुंदर ध्येय की ओर चलना है। तो ये कामना बिल्कुल नहीं रखेंगे कि ऊपर से ही सब कुछ आएगा, आप हमेशा अपने सुंदर सुझाव हम तक पहुंचाते रहिएगा। और अभी भी आज रात को, कल सुबह, आपके मन में जो भी सुंदर भाव हैं, सुझाव हैं, ये तीन चार बातें मैं अंत में कहूंगा। 6:15 तक हमारे पास टाइम है, स्लिप आया था, फिर 15 मिनट के ब्रेक के बाद फिर से आप पहुंचेंगे यहाँ। उन सुझावों के साथ भी एक स्लिप कल आप सब हमें अवश्य दीजिएगा। जी मैम।
ओम शांति। लौकिक परिवार में कोई भी बाबा के ज्ञान में नहीं है, तो उनका विघ्न रूप का पाठ तो खत्म हो गया था, लेकिन फिर भी घर में कुछ हैवीनेस का एटमॉस्फेयर, खिंचाव का रहता था। मैं काफ़ी, मतलब है ना, अपनी तरफ से प्रयत्न करती थी नॉर्मल करने का। अब जब से एक साल से इस प्रोजेक्ट से जुड़े, तो बस अपना रूटीन करती थी, रूटीन सहयोग, स्पेशल कुछ नहीं, लेकिन कब परिवर्तन हो गया पता ही नहीं चला। सब बिल्कुल जैसे कि बाबा बोलते हैं ना, मतलब सहज सहयोगी बन गए सब। तो जैसे सोनू बहन बता रहे थे ना कि हम अपने उस पर चलते जाते हैं तो अपने आप चीजें करेक्ट हो जाती हैं, ऐसे ही बाबा की मुरली में एक किसी में 73-74 में था एक महावाक्य कि सुनते हुए नहीं सोचना। बस इस छोटी सी लाइन ने बहुत मदद की न्यारा होने में। और एक जो मनन चिंतन प्रश्न आता है, तो वो जब सुबह पढ़ते हैं तो लगता है कि ये तो कुछ भी नहीं आता, लेकिन सारा दिन उस पर चर्निंग होती है और उसने बुद्धि को इतना खोला कि एक पता नहीं एक नई कला अपने आप बाबा ने अंदर से निकलवाई, जो कभी भी नहीं करी थी, पोइट्री लिखने की। क्योंकि लौकिक में वैसे डॉक्टर हैं, तो घर में सब ये बोलते भी हैं कि MD में तुमने कभी इतनी पढ़ाई नहीं की जितनी अब कर रहे हो। तो इस पढ़ाई का एक ना अलग ही एडिक्शन हो गया है, जो बहुत अच्छा लगता है। बाकी मुरली क्विज में शुरू से ही नंबर अच्छे आए थे, तो सब बोलते थे, तो मुझे लगता था ये तो बस थ्योरी है, इससे क्या होना है, जब तक प्रैक्टिकल परिवर्तन नहीं आए। लेकिन जैसे भाई जी बोल रहे थे कि ये मुरलियां करते करते कब हमारे संस्कार चेंज होने लग जाते हैं, हम सबके संग बहुत हल्के संबंध संपर्क में आते हैं, तो वो मतलब रियली में मुझे प्रैक्टिकल अनुभव हुआ। तो सभी इस चीज का जरूर लाभ उठाएं, हम जितना मिनिमम भी करेंगे ना तो भी फायदा हमें मिलेगा, और वो फायदा ही हमें और आगे की तरफ खींचेगा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया टीम का।
अपना परिचय तो जरूर दें, नाम और स्थान।
मैं मनीषा हूँ, जयपुर से।
और डॉक्टर हैं, तो मैं MBA से भी ज्यादा स्टडी अब कर रहे हैं, क्योंकि आपको बड़ा पद पाना है ना, तो एक बार तालियां मनीषा बहन के लिए। और बाबा की मुरलियां सुनते सुनते, अभ्यास करते करते आपके बंधन भी हल्के होते जाएंगे, इस बात की भी पक्की गारंटी है। और ये गारंटी तो निश्चित रूप से इस मंच से मैं आप सबको देता हूँ, अनुभव से ये गारंटी देता हूँ। जैसे आज बाबा कह रहे थे ना कि बाबा चैलेंज करता है ना, चैलेंज करता है अर्थात दावा करता है कि तुम ये करोगे तो ये जरूर होगा आज की मुरली में। इस मंच से मैं भी ये दावा अवश्य करता हूँ कि मान लो आज कोई भी अपने आप को स्थिति में, पुरुषार्थ में, या अपने आप को सेवाओं में जीरो समझता हो, पीछे समझता हो, तो ये दावा है इस मंच से बाबा की ओर से कि एक साल यदि बहुत ही ऑनेस्टली, रिलीजियसली आप इन अव्यक्त मुरलियों के साथ इन सुंदर पुरुषार्थ को करेंगे, तो जीरो से आप अगले साल हीरो अवश्य बन जाएंगे। अभी भले जीरो हैं, लेकिन हीरो अगले साल, एक साल का जो हमने टारगेट लिया, यदि आपने बहुत सुंदर उसे फॉलो किए करेंगे तो जीरो से हीरो अवश्य बनेंगे, इसका दावा। और यदि अभी हीरो हैं तो एक साल के बाद सुपर हीरो अवश्य बन जाएंगे, इस बात का भी निश्चित रूप से दावा है, क्योंकि ये करके देखा है और अनोखों के सुंदर अनुभव हैं। भीखा भाई हमारे साथ हैं, भीखा भाई बैठेंगे एक मिनट। एक कुछ बातें जो आपको होमवर्क के तौर पे कल करके आना है, तो उन बातों को आप जरूर नोट कर लें। उसके बाद हमारे पास 2-3 मिनट हैं, भीखा भाई 1-2 मिनट देंगे, फिर हमारी डॉक्टर वीना बहन भी 1-2 मिनट अपनी बातें रखेंगी। जो आपको सुझाव के रूप में पॉइंट्स देने हैं वो ये, जैसे हमने एक विचार लिया है कि एक पंच लाइन हम अपने पूरे प्रोजेक्ट का रखें। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल्प कल्प का विजयी हूं। तो ये पंच लाइन हो सकता है, ऐसे ही कुछ और लाइनें हो तो आप लिख करके दें, उनमें से सेलेक्ट करके कल जब हम अपने प्रोजेक्ट का पूरा ही प्रारूप फाइनल करेंगे तो वो रखेंगे। जैसे एक लाइन जो बिल्कुल गहराई तक हमें उतारना है, कल्प कल्प का विजय, मतलब हर कदम में मुझे विजय मिलेगी ही। एक प्रेरक गीत हम अपने ग्रुप के लिए रख सकते हैं, वो गीत भी क्या हो वो भी आप एक लाइन या दो लाइन में मेंशन कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में क्या आपके नवीन सुझाव हैं कि क्या क्या किया जाए ताकि हम जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, वो सुझाव भी आप एक दो तीन बातें दे सकते हैं। बहुत सारे भाई बहने हैं पूरे ग्रुप में हमारे, मैं समझता हूँ कम से कम 600 से 700 भाई बहने अभी भी बैठे हुए हैं इस हॉल में, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो आपके मन में जो भी भाव आ रहे हैं अब तक की चर्चा को सुनते हुए, तो हम अपने प्रोजेक्ट में क्या नवीनता ला सकते हैं, क्या गहराई ला सकते हैं, आपको सुनते हुए क्या लगा, किस प्रकार के और कुछ सुझाव आपको लगते हैं, जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें जो दिनचर्या आदि रहती है उसमें कोई सुझाव है, तो आप अपनी बातों को लिखकर अपने नाम, अपने स्थान और मोबाइल नंबर के साथ कल आप हमें अवश्य सुबह मुरली क्लास के बाद दे देंगे। ठीक है, सभी करेंगे ये जरूर, जो भी आपके भाव है, या मैं इस प्रोजेक्ट से क्यों जोड़ना चाहता हूं, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी, वो भी आप चाहें तो एक कॉलम में लिख सकते हैं। तो ये तीन चार बातें हैं जो आप करके दें, उसके अलावा भी कोई चीज हो तो आप जरूर हमें दीजिए। जी भिखा भाई।
ओम शांति। बहुत लंबे समय से हम सूर्य भाई जी, रूपेश भाई जी, विनय भाई जी के प्रोजेक्ट से करीब करीब 10-11 साल से भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट से जुड़े हैं। लास्ट 4 साल से फॉलो फर्दर, पर इनका स्वरूप बदलते बदलते हमारा भी स्वरूप बदल गया। कि जैसे भाई जी ने बताया कि पुरुषार्थ, स्मृति और स्वरूप, स्वरूप में बातें समा गई तो स्टेज बदल गया, इधर से इधर आ गए, बैक स्टेज में आ गए। ये सबसे बड़े से बड़ी प्राप्ति, ये प्रोजेक्ट की, प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने की सबसे बड़ी से बड़ी प्राप्ति। दूसरा है कि इस प्रोजेक्ट की गतिविधियां हमने जानी, लेकिन हमने दूसरों को कहां तक पहुंचाया, इसके लिए हमने लास्ट ईयर में रुपेश भाई जी, श्रीकांत भाई जी, संजय भाई जी और अंबिका दीदी जी को साथ में लेकर गुजरात में, पूरे गुजरात में ये प्रोजेक्ट प्लस स्पार्क की गतिविधियां की जानकारी के लिए एक या दो दिन की अलग अलग जगह पर भट्टियां रखी थी। सबसे पहले सूरत मेरे सेंटर से की थी, इसमें 500 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। दूसरा है बड़ौदा नड़िया मेरे सबजोन में किया, वहां करीब 1000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तीसरा है बड़ौदा में, वहां करीब करीब 1000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। सूरत में किया, वो भी करीब करीब 750 लोगों ने किया। सोमनाथ के नजदीक केशोद है, वहां भी 1000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और लास्ट में राजकोट में हुआ, राजकोट में करीब करीब 400 लोगों ने पार्टिसिपेट हुए और दो जगह पर फाइनल है। तो इस हिसाब से ये प्रोजेक्ट हमने लिया, लेकिन और भाई बहनों को कैसे इनकोल करें, ये लास्ट ईयर में हमने करीब करीब 5000 लोगों तक भाई जी को लेकर, साथ में लेकर एक या दो दिन की भट्टी अरेंज करके प्रोजेक्ट का काम आगे चलाया। आप सभी भी ये कर सकते हैं और नेक्स्ट ईयर में भी अभी से 4 भट्टियां गुजरात में फिक्स है। ये हमारी प्राप्ति कहो या परिवर्तन कहो। ओम शांति।
हमारी डॉक्टर वीना बहन अपने दो शब्द अनुभव के तौर पे, क्योंकि ग्रुप से जुड़ करके आप भी बहुत सुंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उसके बाद हम सब योग में बैठ के फिर 15 मिनट का ब्रेक लेंगे। वीना बहन।
ओम शांति। सबसे पहले प्यारा बाबा का बहुत बहुत थैंक्स, और नेक्स्ट हमारी आदरणीय सुषमा दीदी जी हमारी सेंटर की इंचार्ज टीचर है, उन्होंने ही मुझे इंसिस्ट किया कि आप स्पार्क के मेंबर बनो। तब तक मुझे स्पार्क क्या है मुझे आइडिया नहीं था। ज्ञान में चलने के बाद मैं 2014 से स्पार्क की मेंबर बनी, और सबसे पहले तो मैं आपकी तरह स्टूडेंट ही थी, क्विज करती थी। आज जब ट्रॉफी लेते हुए देखा सबको, तो मुझे वापस ऐसा आ गया कि मैं भी क्विज स्टार्ट कर दूं और ट्रॉफी लूं नेक्स्ट ईयर। ऐसा मुझे सच में अंदर से हो गया कि ट्रॉफी विन करना बहुत बड़ी बात है ना, क्योंकि हमारा वो कमिटमेंट रह जाता है पुरुषार्थ के प्रति। और जब स्पार्क की बुक्स पढ़ी मैंने, विशेष जो बाबा के महावाक्य ऊपर आधारित होती है, तब से मुझे लगा कि स्पार्क में बाबा के महावाक्य ऊपर ही फोकस किया जाता है पुरुषार्थ के प्रति। तो मुझे भी लगा कि मुझे भी कुछ करना है, क्विज तो मैं करती ही थी लेकिन सब कुछ डिफरेंट पुरुषार्थ में। तो सचिन सर के क्लास से मुझे ये प्रेरणा मिली कि हम बाबा के महावाक्यों को संकलन करें। तब से जैसे 2018 से स्पार्क का प्रोजेक्ट भी हम ले रहे हैं, तो तब से मुझे लगा कि ये अव्यक्त महावाक्यों का संकलन भी जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है टॉपिक एवरी ईयर, तो मुझे प्रेरणा मिली कि ये भाई बहनों के लिए हम भेजते तो हैं तो संकलन भी करें तो उनके पास एक रिकॉर्ड बन जाए और स्पार्क के ऑफिस में भी है बाबा के महावाक्यों का संकलन हो जाए। तो बाबा ने ये सुंदर प्रेरणा दी। और सबसे ज्यादा तो हमें मुंगसा वो रहता है कि आप लोग जब क्विज करते हैं, रात्रि क्लास में ज्वाइन होते हैं, तो हमें भी हमारा उमंग उत्साह बढ़ाने की और आपके प्रति कुछ न कुछ नया लाने की हमें प्रेरणा मिलती है। तो आप सबका भी और विशेष सोनु बहन का, रुपेश भाई जी का और सूरज भाई जी का भी बहुत बहुत थैंक्स जिन्होंने मुझे टीम में शामिल किया आप सबकी सेवा के लिए। थैंक यू।
बहुत शुक्रिया वीना बहन आपका। अच्छा, बाकी सबने वो फॉर्म यदि फिलअप कर दिया है, लिख दिया है, तो वो हमें दे देंगे। और जैसे कहा कि कोई भी मिस ना हो, क्योंकि फिर इसी को ऐड किया जाएगा ग्रुप में और आपको सारी चीजें ग्रुप में ही प्राप्त होंगी, वो मिलती रहेंगी। कल भी प्रपोजल आपको दिया जाएगा जो हम प्रपोजल फाइनल करेंगे। तो चलें सब मिलकर के पूरे उमंग के साथ, उत्साह के साथ। हाँ जी संगीता बहन, कुछ बोलेंगे आप? संगीता बहन कुछ बोलना है आपको? आइए प्लीज, आइए। दो मिनट में फिर हम लोगों को ब्रेक लेना है। आशा दीदी आने वाले थे, वो नहीं आ पा रहे हैं, तो फिर भी 6:30 से 7:30 तक जैसे योग का प्रयोग होता है वैसा हम सब करेंगे। तो ये फॉर्म फिलअप करके सभी अपना जरूर दे देंगे और साथ ही हम पूरे उत्साह के साथ अपने सुंदर नए प्रपोजल के साथ हम अपने इस व्यक्त से अव्यक्त की यात्रा की ओर चलेंगे। संगीता दीदी वाराणसी से हमारे साथ हैं, तो आप भी दो शब्द कहें।
ओम शांति। जैसे प्रोजेक्ट शुरू होता है तो जैसे ही यहाँ से हमको प्रोजेक्ट मिलता है और हम जाते ही तुरंत बारसी सेंटर पर मीटिंग करते हैं, तो स्पार्क जैसे 30 साल से शुरू हुआ है तो हमें इतनी खुशी है कि 30 साल से हम लोग बारसी में ये प्रोजेक्ट निभा चलाते रहते हैं। और रमेश भाई से ही हमें सबसे पहले ये प्रेरणा मिली है, स्पार्क जैसे शुरू हुआ और रमेश भाई जी ने हमको बहुत बड़ा वरदान दिया, उस बात को हम ध्यान रखते हुए हर साल पूरा सोलापुर सबजोन करता था, लेकिन धीरे धीरे बाबा कहते हैं कि छूटते जाते, लेकिन हम लोग छूटे नहीं क्योंकि भाई जी ने हमको वरदान दिया, तो हम उस वरदान को लेके 30 साल से इस प्रोजेक्ट को चलाते हैं। और जैसे अभी का जो प्रोजेक्ट चल रहा है तो इसमें हमारे 20 मेंबर यहाँ पर आए हैं रुपेश भाई जी, 20। तो इसमें आप देखेंगे तो बहुत बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं कि जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता है, लेकिन जैसे ही मुरली की क्विज होती थी तो कभी कभी हम उनको भेजने का भूल जाते थे, तो वो हमको याद दिलाते थे कि अभी तक हमको मुरली की क्विज के लिए लिंक भेजा नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि बारसी के जितने भी आए हैं बारसी और सोलापुर सबजोन में, तो वो खड़े रहेंगे तो हम देखेंगे कि कितनी बूढ़ी माता है कि जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता है और वो मोबाइल पर ये लिखती है, तो बहुत खुशी की बात होती है। और हर रविवार को हम लोग खास बारसी सेंटर पर सभी की मीटिंग रखते हैं 5:30 से 6:30 बजे तक और 6:30 से 7:30 तक योग करते हैं। तो ये माताएं एक ऐसी माता इसमें है कि जो क्विज छुड़ा करके पति का इतना बंधन होता था कि वो आ नहीं पाती थी, लेकिन भाई जी इस मीटिंग में वो माता जी क्विज छुड़ा के और अव्यक्त मूल्यों की स्टडी करके निर्बंधन बन करके यहाँ पर आज स्पार्क मीटिंग में आई हुई है। तो बहुत खुशी की बात है, पीछे माताएं बूढ़ी बूढ़ी है कि जो लिख नहीं पाती है वो लिख पाती है, तो हमको खुशी है कि इस स्पार्क के पुरुषार्थ से हमारे सेंटर का वातावरण भी बहुत अच्छा बनता है और नए लोगों के लिए भी हम यहाँ पर शांति अनुभूति हर 15 दिन में रखते हैं, तो वो लोग भी बहुत अच्छा अनुभव करते हैं। तो ऐसे ही हम स्पार्क का पुरुषार्थ सभी टीचर्स मिलकर के बाबा की प्रत्यक्षता के लिए जरूर सहयोगी बनेंगे और ये पुरुषार्थ हम सदैव के लिए सोलापुर सब जोन में करना चाहते हैं। अभी भी मैं डेट लेके जाने वाली हूँ और पूरे सोलापुर सब जोन लेवल पर एक स्पार्क मीटिंग करना चाहती हूँ। ओम शांति।
थैंक यू दीदी, आपका बहुत बहुत। चलिए अब हम 2 मिनट प्यारे बाबा को दिल से शुक्रिया करते हुए, दृढ़ संकल्प करते हुए कि बाबा हम व्यक्त से अव्यक्त बने की बने, और पूरी दृढ़ता, पूरी धुन, पूरी लगन से हम आपकी आशाओं को पूरा करेंगे इन्हीं सुंदर संकल्पों से। 2 मिनट बाबा की याद के साथ हम बैठे।
तन में है यही उमंग,
बदलेंगे जग के इस जीवन के रंग।
हम है राही, रुकते नहीं,
इतना है दम, थकते नहीं।
खुमार दिल में हम प्रभु के संग, मन में है तन में है यही उमंग, बदलेंगे जग के इस जीवन के रंग। अंतर ज्योति जगाएंगे सबकी,
चंदन सा महके हर एक मन, करके तपस्या बने पावन।
चंदन सा महके हर एक मन, करके तपस्या बने पावन।
पुलकित धरा पुलकित गगन, लहराती सुखदाई पवन।
पुलकित धरा पुलकित गगन, लहराती सुखदाई पवन।
है एतबार जो प्रभु को पसंद,
हमारी प्रभु ने बनाई, स्नेह शक्ति से हमें दी राजाई।
तकदीर हमारी प्रभु ने बनाई, स्नेह शक्ति से हमें दी राजाई।
भाग्य हमारा ऐसा मिला, मन के चमन ये खिला खिला।
भाग्य हमारा ऐसा मिला, खिला खिला।
प्रभु से मिली मन की मंजिल,
कहता यही हमारा दिल।
आई बहारें लेके तरंग, मन में है तन में है यही उमंग, बदलेंगे जग के इस जीवन के रंग। हम है राही, रुकते नहीं, इतना है दम, थकते नहीं। खुमार दिल में हम प्रभु के संग, मन में है तन में है यही उमंग, बदलेंगे जग के इस जीवन के रंग।